प्रश्नोत्तर जहां डिवाइन फोर्स की उपस्थिति होती है वहां पर समय रुक जाता है. ये वी हैव टेकन इन दिस अप. अगर स्वर्ग नरक नहीं होते तो भगवत गीता में श्री कृष्ण क्यों कहते हैं ओके थ्री आर द डोर्स ऑफ हेल, है ना? क्या भगवत गीता को प्रामाणिक नहीं मानते? ऐसा तो हो ही नहीं सकता. श्रीमद् भगवत गीता से अधिक प्रामाणिक क्या हो सकता है? बात ये नहीं होती कि स्क्रिप्चर में क्या लिखा है, बात यह होती कि उसको कैसे हम पढ़ रहे हैं. तो एक होती है नरक और स्वर्ग एज डोमेन्स ऑफ बीइंग, कि फला जगह लोकेटेड है वहाँ जाके आपके साथ ये सब होता है जो लिखा जाता है विस्तार से, या जो पंडित बताते हैं, या कहीं कहीं पुराणों में मेंशन है. और दूसरा ये कि ये एक अवस्थाएं हैं नरक और स्वर्ग. जैसी बात हुई कि मानव जीवन में हम कई लोकों का स्पर्श पाते हैं, दे आर मैनी वर्ल्ड्स एंड प्लेन्स जिनकी ऊर्जाएं हमको इफेक्ट करती हैं. और ऐसी अवस्थाएं होती हैं जब हम भय, शंका, इन सब से घिरे होते हैं. ऐसी अवस्था होती है जब हम श्रद्धा उत्साह से भरे होते हैं, जॉय से भरे होते हैं. तो ये अवस्थाएं क्यों प्रकट होती हैं? अगर हम इसके पीछे जाएं तो हम देखेंगे कि ऐसे लोग हैं जिनकी शक्तियाँ, डोमेन्स हैं जिनकी शक्तियाँ हमको इम्पैक्ट करती हैं. तो ये क्यों इम्पैक्ट करती हैं? एक सीक्रेट एफिनिटी होती है, या हमारे कर्मों के कारण हम उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं. मतलब इसी चीज़ को अब मैं थोड़ा उससे समझा रहा हूँ. मान लीजिए कोई व्यक्ति हर चीज़ में नेगेटिव देख रहा है, अपने अंदर भी, संसार के अंदर, तो वो बाय द वेरी फैक्ट इट्स लाइक ए रिमोट चैनल. वो किन शक्तियों को अपने अंदर बुलाएगा? वे शक्तियां जो इफ आई यूज ए मॉडर्न लैंग्वेज नेगेटिविटी की शक्तियां हैं. नेगेटिविटी की शक्तियां कहाँ से आती हैं? ये उन डोमेन से आती हैं जहां पर डोमेन डिस्क्रिप्शन ही है डार्कनेस का. क्योंकि नेगेटिविटी क्या होती है? जब हम नहीं देख पाते हैं सत्य को, प्रकाश को, जॉय को, तो नेगेटिविटी अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो एक एब्सेंस है, अभाव. माइनस वन इज डिराइव्ड फ्रॉम वन. सो उसी प्रकार से ये अभाव की स्थिति, जब ऐसे लोग हैं जो अपने अंदर हमेशा अभाव महसूस करते हैं, उनके लाइफ में सब कुछ हो तो भी उनको लगता है कि मेरे जीवन में कमी है. देखा है अभाव की जो स्थिति होती है, वो एक एक्सट्रीम तक चली जाती है कई बार. तो ये जो नेगेटिविटी है, ये ऐसे वर्ल्ड्स हैं जिनको महर्षि अरविंद बताते हैं विस्तार से कि होस्टाइल एंड एडवर्स वर्ल्ड्स, सबकॉन्शियंट वर्ल्ड्स. तो ये वर्ल्ड्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं. और अगर हम अधिक क्रोध करते हैं, जो त्रिविध द्वार बताया गया है, ये काम क्रोध, श्री अरविंद भी इसको माता पुस्तक में लिखते हैं कि लस्ट, ग्रीड फॉर, लस्ट फॉर पावर, एंड ऑफ कोर्स लस्ट अप्लाइज एट अदर लेवल्स ऑल्सो, ग्रीड फॉर मनी एंड एम्बिशन, ये तीन जो हैं ये द्वार हैं, ये कहते हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति नीचे गिरता है. तो जब वो नीचे गिरता है तो उसको ये चेतना में उसको ये सारे उनके इम्पैक्ट होने लगते हैं. तो ये एक बेसिक चीज़ है. अब समस्या कहाँ आती है कि श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि ये तीन द्वार हैं नरक के, वो आप जीवित होगे तो भी आप इसमें गिरोगे. जो व्यक्ति इन इन भय में रहता है, शंका में रहता है, जो हर समय महत्वाकांक्षा से जुड़ो, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, एम्बिशन में रहता है, जो हर समय एक और पैसा, और पैसा, पैसे को बस पकड़ के रखो, तो उसका जीवन तो नरक, कहते हैं ना नारकीय जीवन. मृत्यु के बाद क्या होता है? ये नेचुरल है कि क्योंकि उसकी एक एफिनिटी है इन जगत के साथ, खासकर मृत्यु के समय, तो मृत्यु के बाद भी वहां अट्रैक्ट होके जाएगा. अब दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द आइडिया ऑफ हेल एंड हेवन एज इज प्रोपगेटेड. प्रोपगेट कैसे किया जाता है? तुमने पाप किया है, तुम्हें दंड मिल रहा है. ये कहीं श्री कृष्ण केवल एक मेंशन करते हैं कि जो इस तरह का जीवन जीते, मैं उनको और अधिक आसुरी योनि में जन्म देता हूं टिल द टच रॉक बॉटम. उसके बाद वो कहते हैं कि अगर फिर भी वो भगवान के नाम का स्मरण करे तो उसको ये मानना चाहिए कि वो संत है. दैट इज द ओनली प्लेस ही स्पीक्स अबाउट रेट्रोग्रेशन. लेकिन हमने उसका क्या बना दिया है? तुम नरक में जाओगे, रोस्ट होगे. पहले तो वो पनिशमेंट मिल रहा है, विच इज सो स्ट्रेंज. श्री कृष्ण इस तरह की भाषा कहीं नहीं कहते, लेकिन हम लोग पंडित ये कि तुम्हें सजा मिलेगी, ये भाषा भारतवर्ष की नहीं है. और उसके बाद क्या होगा, सजा मिलने के बाद जब तुम धरती पर आओगे तुमको डबल पनिशमेंट मिलेगा. दिस इज वेयर द प्रॉब्लम ऑफ नरक एंड स्वर्ग कम्स इन. हाँ, ऐसे जगत है जहां मृत्यु के बाद आप जाएंगे. श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो डिजायर करते हैं अर्थली गुड्स के लिए, कहते हैं ना जो अन्य अन्य डिजायर जिनके मन में होती है इसलिए वो भगवान की ओर मुड़ते हैं, तो उनको मैं देता हूँ, फिर वो स्वर्ग भोग करके वापस पृथ्वी पर आते हैं. इस पे से नॉट ओनली अबाउट नर्क. तो ये स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं, ये डोमेन्स हैं जहाँ हम जाते हैं एंड देन वी कम बैक बाई नेचुरल एफिनिटी. इट इज नॉट पनिशमेंट, इट इज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस. तो ये एक किस लिए जरूरी है, क्योंकि नेचुरल कॉन्सिक्वेंस जब हम कहते हैं किसी चीज का एक नेचुरल परिणाम है, तो हम क्या कह रहे हैं, उसको एक विज्ञान का आधार दे रहे हैं, और उस चीज को पाप पुण्य पनिशमेंट रिवार्ड की जगह हम लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं. तो हम सब एक लर्निंग कर्व पर हैं. तो कर्म की जो थ्योरी है वो रिवार्ड पनिशमेंट की नहीं है, वो एक लर्निंग कर्व. अब आदमी दो तरह से सीखता है, दूसरों के अनुभव से सीखता है या अपने अनुभव से सीखता है, ज्यादातर अपने अनुभव से सीखता है. तो इन सब को सीख के वो कहीं ना कहीं उसके अंदर गहराई में इस बात को भी कोई चीज धर कर जाती है कि ये चीज मुझे दूर ले जाएगी मेरे अपने डिलाइट से, ये चीज मुझे करीब ले जाएगी टुवर्ड जॉय ऑफ बीइंग. तो ये इसका जो विस्तार है, जिसके डिटेल में श्री अरविंद कार्मिक थ्योरी को बताते हैं. प्रश्न ही नहीं उठता श्री कृष्ण को प्रामाणिक नहीं मानने का. अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ वेदों की, ये प्रामाणिकता की बात. कई लोगों को ये समस्या होती है. ईश उपनिषद में लिखा है, ईश उपनिषद के जो ऋषि हैं, कर्म करना आवश्यक है, उसके हमें कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए. अब लिखी तो उन्होंने ये बात है. अब जो ट्रेडिशनल इंटरप्रेटर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो तो मोक्ष की बात करते हैं और कर्म तो स्टॉप होना चाहिए एक टाइम के बाद. लेकिन ये तो कुछ और ही कह रही है ईश उपनिषद. कुर्वन नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतांग समा. तो उन्होंने क्या किया है, वर्ड्स को भी ट्वीक कर दिया. इवन द ग्रेट शंकराचार्य, उन्होंने ट्वीक किया है वर्ड को और ट्वीक करके इसका एक अलग इंटरप्रिटेशन निकाला है. तो वो इंटरप्रिटेशन उन्होंने अल्टीमेटली इसको भी मोक्ष की तरफ ले गए. जैसे गांधी जी, गीता का इंटरप्रिटेशन पूरा सिंबॉलिक कर दिया उन्होंने. और आप कर सकते हो इसको, सिंबॉलिकली भी देख सकते हो. आप कह सकते हो कि भाई पांडव अर्जुन रियल नहीं है, आपके अंदर हैं, 5 पांडव हैं और 100 अर्जुन हैं, 100 कौरव हैं और बीच में श्री कृष्ण, ये सब आपकी आंतरिक वो है. लेकिन अगर आप शेरविन पॉइंट करते हैं, अगर आप गीता का कंटेक्स्ट देखो, उसका प्रारंभ देखो, तो एक क्लियर होता है कि ये केवल एक सिंबॉलिक बात नहीं करी जा रही है. कहाँ से शुरू होती है, दुर्योधन कहता है अरे हमारी सेना देखिए इसमें ये है वही, इसमें क्या सिंबल है, वो एकदम कंटेक्स्ट है. और ये कंटेक्स्ट जरूरी है कि ये रियल लाइफ सिचुएशन की है गीता. गीता केवल एक अंदर में होने वाले अंतर युद्ध की बात नहीं है, वो तो है, पर जो आपको डिसीजन लेने हैं वो रियल लाइफ में डिसीजन लेने हैं. डिसीजन एक अंदर सिंबॉलिक स्तर पे नहीं हो रहे, रियल लाइफ के डिसीजन है. एक और आपके बंधु बांधव है, एक और आपके साथ अन्याय हुआ है, अनजस्ट अनफेयर मीन से कोई बात हुई है, एक और आप ममता स्नेह अटैचमेंट से बंधे हैं, दूसरी और आप कर्तव्य से बंधे हैं, तो आप क्या डिसाइड करेंगे. तो ये रियल लाइफ सिचुएशन की चीज है गीता, इसीलिए वो एंड्योर करती है. पर इंटरप्रिटेशन जो होते हैं उसके इस तरह के किए गए हैं. अब कौन सा ऑथेंटिक है, अब वहां पर जो सुबह आप तो वाक्य की बात हो रही थी, अब लोगों ने श्री अरविंद से भी पूछा कि शंकराचार्य तो ऐसा नहीं कहते या कोई और ऐसा नहीं कहता है. तो एक जगह तो उन्होंने कोट किया. कोट कैसे किया, अब ये इसलिए क्योंकि स्क्रिप्चर को हमें कम से कम अंदर के एक प्रकाश से देखना चाहिए. वाइल इट इज वन थिंग कि डाउट करना अलग बात है, बट टू गो इन टू ए डीपर अंडरस्टैंडिंग. तो अब जब स्वामी विवेकानंद से श्री अरविंद कोट करते हैं इस कहानी को, किसी ने उनसे पूछा कि सर शंकराचार्य डज नॉट से सो, यू नो व्हाट इज आंसर वाज, यस बट आई विवेकानंद से सो. अब वो किस आधार पे कह रहे हैं, इट इज नॉट एन इगोइस्टिक स्टेटमेंट, ही हैज रियलाइज्ड इट. अब श्री अरविंद यही कहते हैं माई प्रॉब्लम विद मायावाद, यहां इससे नहीं मायावाद, My problem with मायावाद is that मुझे वो अनुभव हुआ जो उनको हुआ था, लेकिन मुझे इसके आगे का अनुभव हुआ, तो why can't, I mean, I have a right to say this. अब interpretations, secret of the Vedas, अब उसके पहले भी हुए हैं, मैक्स मुलर से लेके स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने इसका इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन किया, और भी लोगों ने किया. अब श्री अरविंद, वाई इट इज मोर ऑथेंटिक, अब मैं केवल एक इंटेलेक्चुअल भूमि पर कर रहा हूं इस बात को कि वाई श्री अरविंदोज इंटरप्रिटेशन इज मोस्ट ऑथेंटिक. नंबर वन, उनके एक अनुभव में श्री कृष्ण आते हैं, उनको गीता देते हैं, गीता की एज ही सेज उनका एक्सपीरियंस की गीता की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश करती है, जो कुछ गीता के श्री कृष्ण हमें कहना चाहते हैं वो उनको, ही रिसीव्स इट. साथ में वो ये भी कहते हैं कि श्री कृष्ण उनको एक नया निरुक्त देते हैं. निरुक्त, निरुक्त इज एपिस्टेमोलॉजी, ग्रामर होती है ना, तो ग्रामर कैसे बनती है, अब उसके रूट्स हैं, ग्रामर एक डेवलपमेंट है. तो आज जब हम पढ़ रहे हैं, अगर कोई ग्रामेरियन क्या बताएगा इंग्लिश की लैंग्वेज, लैटिन रूट्स क्या थे, लैटिन के रूट्स कहाँ से आए, तो श्री कृष्ण श्री अरविंद को क्लू देते हैं, और वो क्लू होता है टू री इंटरप्रेट द वेदाज इन दैट लाइट. क्योंकि वेदों को कई ऐसे, मैक्स मुलर ने जिसके नाम बहुत लेते हैं, उन्होंने भी कई जगह वेदों को वो नहीं समझ पाए, कई जगह कहते हैं कि बड़ा अच्छा है, कई जगहों पे कहते हैं कि बड़ा ये तो अजीब सी बात है कि घोड़े के पाँव में घी है और हिन्ना रहे घोड़े और घी टपक रहा है, अब ये नेचुरली ये तो वो कहेंगे कि प्रिमिटिव सिविलाइजेशन की बात है. लेकिन आप निरुक्त के को लगा के देखेंगे तो वो कहते हैं कंसिस्टेंट इंटरप्रिटेशन है श्री अरविंद. तो श्री अरविंद के पास दोनों चीज़ हैं, योग सिद्धि है, प्रामाणिकता है, श्री कृष्ण के साथ तादात्म्य है, और साथ ही उनको भाषा की सिद्धि है. श्री अरविंद 32 भाषाओं के ज्ञाता हैं, ओरिजिनल संस्कृत में उनकी लेखनी है, भवानी, वो भवानी भारती 99 वर्सेस की पोयम है. तो वह श्री अरविंद जब कहते हैं कोई चीज तो वो अथॉरिटी मानी जाती है, और कोई और गीता को इंटरप्रेट करता है तो वो उसको लेस अथॉरिटेटिव है, इवन इफ आई कंसिडर इट एज गिव ग्रांटेड सम अथॉरिटी, इवन इफ इट इज ही इज ए योगी, स्टिल श्री अरविंद ने जिन चीजों को रियलाइज किया और भाषा में भी उनकी सिद्धि है, तो ही बिकम्स एन अथॉरिटी. देन द थर्ड इज कि हमारे अंदर एक इननेट सेंस होती है जिसके अंदर ईश्वर का एक होता है, इंट्यूटिवली हम जानते हैं भगवान को, तो वो इननेट सेंस हमें ईश्वर के बारे में क्या अवधारणा बताती है. एक बार एक टॉक में एक बच्ची ने मुझसे कहा सर आपकी टॉक्स अच्छी है बट लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम. मैंने कहा क्या बेटे, तो बोली मैं आई डोंट बिलीव इन गॉड. तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, गॉड बिलीव्स इन यू. फिर मैंने ऐसे जोक तो कर दिया, फिर मैंने कहा व्हाट गॉड यू डोंट बिलीव इन. बोली द गॉड हु पनिशेज एंड रिवार्ड्स, शी वाज वेरी राइट, ये परसेप्शन है उसके अंदर. तो मैंने कहा ग्रेट, आई ऑल्सो डोंट बिलीव इन दिस गॉड, वी आर ऑन सेम पेज. तो फिर मैंने पूछा व्हाट गॉड यू बिलीव इन, शी सेज हु इज फुल ऑफ लव एंड कंपैशन. आई सेड वी आर टॉकिंग द सेम लैंग्वेज. तो अब भगवान अनंत हैं, जब हम उनको एक जज बना देते हैं, वो भी एक हार्श जज, एक ह्यूमन जज भी, जो नहीं करेगा कि आपको डबल पनिशमेंट दे, आपकी आंतरिक अवस्था बिना देखे आपको कंडेम कर दे, वह जिसने खुद बनाया है अज्ञान, वह जिसने मनुष्य को अज्ञान में जिसके कारण आया है, कोई हम लोगों ने थोड़ी कहा था कि हमको अज्ञान में जीने का मजा लेना है. तो अब मैन हैज एंटर्ड इनटू इग्नोरेंस, उसके पीछे कारण आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, ऋषि जी बताएंगे द लाइव डिवाइन में व्हाई मैन प्लस इनटू इग्नोरेंस. लेकिन इट इज अ फैक्ट कि वी आर इन इग्नोरेंस, वी वेर नॉट कंसल्टेड. श्री अरविंद कहते हैं एज इफ मैन हैड से इन हिज ओन मेकिंग, as if he was consulted. No, that's not true. Yes, man is accepted to plunge. That's a different story altogether. Darkness, adventure of otherness, वो एक अलग चीज है. तो अज्ञान, एक उमर खयाम की बड़ी सुंदर सी एक एक हाँ चौपाई कह देते हैं हम, चलो हाँ. तो उसमें वो क्या लिखते हैं, ओ दाओ, इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा, ओ दाओ हु बिसेट माई रोड with pitfall and with gin, who, O thou who with pitfall and with gin beset the road I was to travel in, wouldst thou with predestination around impute me for my fall to sin. Apne sadak pe to gadhe bane hue, paap pravarti de di, एरर अनकॉन्शियसनेस की संभावना दे दी, अब गिर गए, अरे पापी पापी अब तुझे पनिशमेंट। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है डिवाइन के बारे में एज ए जज हु इज पनिशिंग एंड रिवार्डिंग इज व्हाट वी शुड लीव असाइड। बट देन हाउ टू अंडरस्टैंड, इसको हम कैसे समझे? ओनली वे इज लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंस। अब इसमें यह भी बात आ जाती है जो एक प्रश्न है, इसको मैं दूसरे ढंग से ले रहा हूं। बच्चा है आपका, अब बच्चे को आप इक्विप करते हो ना राइट चॉइसेस बनाने, सो जो कुछ का। अब बच्चा जब कई बार होता है ना कि नहीं सुनता है, तो माता पिता क्या कहते हैं? अच्छा वो करेगा तो अपने मन की, करता है मुस्कुरा रहा है, करता है सीखता है। इसलिए वो बच्चा जब 40 का होता है तो वही बच्चा जब 15 आए मम्मी आई डोंट बिलीव इन यू, 40 का होता है मम्मी आई अंडरस्टैंड यू। तो अब क्या मम्मी ने प्यार करना बंद कर दिया था? क्या उसको जब वो प्रोसेस से जाने दे रही थी तो क्या उनके हृदय में प्यार नहीं था? उनका हृदय ज्यादा जल रहा था, पीड़ित हो रहा था, बट शी न्यू कि दिस इज द ओनली वे द चाइल्ड विल लर्न। पर वो खड़ी थी हमेशा कि ये बस इमीडिएटली आई एम देयर एज हेल्प। तो हमेशा हम ये भी देखते हैं कि जीवन में कठिनाई के साथ भगवान की का टच भी साथ में चलता है किसी ना किसी रूप में। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड ये जो हमारा रिलेशन गॉड के साथ है ये इवॉल्व करता है। और एक समय था जब पाप पुण्य रिवार्ड पनिशमेंट, अब हमारा रिलेशन जब इवॉल्व करता है, जब हम ये कहेंगे कि वही सब कुछ बन गया है तो पाप पुण्य का स्कोप खत्म हो जाता है, दैट्स ए हायर नॉलेज। तो दैट्स हाउ वी हैव टू सी द स्क्रिप्चर। और सच में श्री अरविंद एक जगह कहते हैं इफ गीता इज टू रिपीट द सेम थिंग जो आप इस्लामिक स्क्रिप्चर में पढ़ रहे हैं, देन व्हाट्स द बिग डील, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट। अच्छा अब गीता क्या कहती है, कैसे कहती है? वो कहती है तीन अवस्थाओं में किया जाता है कर्म। अब वो यहां पर कह रही है कि जैसे जिस गुण के अधीन होकर तुम कर्म कर रहे हो वही कर्म परिणाम अलग अलग होंगे। तामसिक दान कर रहे हो तो उसका परिणाम क्या होगा? गीता तो ये नहीं कहती, दान तो अच्छी चीज है, पर गीता कहती है इससे तुम्हारे अंदर मोह उत्पन्न होगा और जिसको दे रहे हो उसके अंदर भी मोह होगा, डिल्यूजन होगा। हाउ टू अंडरस्टैंड दिस? रजस में कर रहे हो वही कर्म, फिलंथ्रोपी कर रहे हो, दे रहे हो, अच्छी चीजें दे रहे हो, लेकिन रजस में आपको सुख दुख उत्पन्न होगा परिणाम स्वरूप। व्हाई इट इज सेइंग दैट? कर्म तो सेम है, दान। सत्गुण में अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर सुखम और प्रकाशम, देयर विल बी ग्लैडनेस एंड लाइट। और आध्यात्मिक चेतना में तुम वही काम कर रहे हो, देन यू कम क्लोज टू मी एंड यू बिकम फ्रीड फ्रॉम इग्नोरेंस। सो वी हैव टू गेट दैट डीपर सेंस ऑफ ए स्क्रिप्चर। सरफेस रीडिंग पर बहुत सी चीजें, अब नरक वर्ड हम लोग यूज भी करते हैं, दो सेंस में यूज करते हैं इवन ऑर्डनरी लाइफ में। जब हम कहते हैं कि तू तो नरक का वासी है, एक वर्ड होता था निशाचर, रिमेंबर? निशाचर किसको बोलते थे? और राक्षसों को भी बोलते थे निशाचर। फिर कहते हैं निशाचर ही प्रवृत्ति। अभी तो इतने निशाचर हो गए हैं, रात को लेट नाइट जगना, होस्टाइल फोर्सेस और डार्क फोर्सेस से उनको एनर्जी मिलती है। तो निशाचर, अब ये वर्ड वही है लेकिन इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक। गो, गो की तो बात हुई है, अश्व की बात हुई है, वैसे ही स्वर्ग नरक। स्वर्ग वह अब स्वर्ग भी कैसे आया, ये वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्वर स्वर्ग, तो ये जो स्वर लोक इज दी हेवन ऑफ दी आइडियल माइंड। जब ऋषि उस अवस्था में उठते थे तो उनको एक अनुभूति होती थी, रेडिएंट हैप्पीनेस, अगर एक वर्ड में बोला जाए तो रेडिएंट हैप्पीनेस। अब बाद में स्वर्ग में क्या ऐड कर दिया गया, हर समय वहां नाच गाना हो रहा है, सोमरस का पान हो रहा है, सोमरस को बना दिया कि यहां की जो वाइन है। तो ये इंटरप्रिटेशंस की प्रॉब्लम है, ये अवस्थाएं हैं, डोमेन्स भी हैं, लेकिन रिवार्ड पनिशमेंट नहीं है। आपने अगर एक प्रकार के, अब देखिए सुसाइड को बुरा क्यों माना गया, यू मे हैव बीन ए गुड गाय, बट आप डेथ के टाइम पर आपकी जो स्टेट होती है वो सीधा आपको लॉन्च करती है उस वर्ल्ड में, इट इज साइंस। अगर वो केवल रिवार्ड पनिशमेंट होता तो भाई ठीक है, सुसाइड किया अंत में, बेचारा परेशान था, जिंदगी तो अच्छे से जी रहा था, ईमानदार था, टैक्स पेयर था, तो इट इज नॉट अबाउट दैट। वो डार्क स्टेट में जब हम एग्जिट करते हैं तो वो डार्कनेस हमको डार्क वर्ड्स में ले जाती है. सूर्य नाम तेलो का प्रत्याभि गच्छन्ति, दैट्स हाउ इट गोज. सो इट्स अ साइंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन टुडेस कॉन्टेक्स्ट. साइंस नॉट मटेरियल साइंस बट अ हायर साइंस.
मैं एक क्वेश्चन पूछूं?
हाँ
ऋषि. यूथनेशिया पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, कंसेंट टू डेथ.
ये एग्जैक्टली. सो यूथनेशिया का जहां तक सवाल है, इट शुड बी वेरी क्लियर, देयर आर टू काइंड्स ऑफ यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया एंड एक्टिव यूथनेशिया. एक्टिव यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया, कोई मरना चाह रहा है, कौन उसको रोक रहा है? ये सुसाइड है. उसको अगर जस्टिफाई कर रहा है तो कर रहा है. व्हाई इट इज सुसाइड? बेसिकली यू आर नॉट एबल टू बेयर द बर्डन ऑफ सफरिंग. ये तो सुसाइड करता है, वो भी यही बोलता है कि भाई आई एम नॉट एबल टू बेयर द बर्डन ऑफ साइकोलॉजिकल सफरिंग. लेकिन ये उसके हाथ में, उसमें लॉ क्या करेगी? कोई आदमी पीड़ा में था, उसने खाना पीना बंद कर दिया या इंजेक्शन ले लिया, कुछ भी कर दिया, एंड ही डाइड. तो पैसिव यूथनेशिया आउट ऑफ क्वेश्चन. थिंग इन क्वेश्चन इज एक्टिव यूथनेशिया. डॉक्टर शुड गिव, व्हाई शुड ए डॉक्टर डू दिस? यू आर बेसिकली मेकिंग ए मर्डरर. डॉक्टर की तो ये इंस्टिंक्ट नहीं होती है. डॉक्टर का ये काम नहीं है कि सफरिंग रिलीव करने के लिए मैं तुमको मार डालूं. ये डॉक्टर का काम है सफरिंग के कारणों का निदान करना, और अगर वो कर सकता है तो करे, नहीं कर सकता है तो हाथ खड़े कर दे. डॉक्टर शुड नॉट प्ले गॉड. है ऐसी सफरिंग यू कांट रिलीव, एक्सेप्ट द लिमिटेशन कि भाई मेडिकल साइंस में इसका सोल्यूशन नहीं है, भगवान को प्रे करो. बट डॉक्टर नहीं चाहता है कि भगवान को प्रे करो, क्योंकि है तो डॉक्टर ही भगवान. तो चलो मैं तुम्हें मुक्ति दे देता हूं, ये क्या सॉल्यूशन है? पीड़ा से मुक्ति यूथेनेशिया देके, मतलब ना रहेगा रोग, ना रहेगा तू, ना रहेगा रोग. तो इट इज इलॉजिकल.
बट देयर आर केसेस वेयर यू नो आई मीन द सफरिंग वाज सो मच, देयर वाज नोबडी टू टेक केयर.
डजंट मैटर, दैट्स वेयर वन हैज टू बिलीव इन द डेस्टिनी. ये जो नोबडी टू टेक केयर, देयर इज समथिंग व्हिच वन इज लर्निंग थ्रू दिस प्रोसेस. वो अगर कोई सोच रहा है ना आज वो बच जाएगा, नोबडी टू टेक केयर, यू विल फेस द सेम चैलेंज इन अनदर लाइफ फ्रॉम द स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव. व्हाई देयर वाज नोबडी टू टेक केयर? देयर इज समथिंग व्हिच वन हैज टू लुक इनसाइड. कोई भी एक व्यक्ति जिसने जिंदगी में जिया है, जिसने अपने फैमिली के बाहर आकर के कुछ किया है, देयर विल ऑलवेज बी पीपल टू टेक केयर. सम हाउ इट विल बी अरेंज. लेकिन जो केवल मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे, बच्चे नहीं है, वो चले गए, गॉन. तो ये एक लर्निंग है ना कि माई लाइफ आई शुड हैव लिव्ड इन अ बेटर वे. कंपैशन नोज द रियल कंपैशन बाय डेफिनेशन इज इट नोज द कॉजेज ऑफ सफरिंग एंड रिलीव्स इट. कॉज ऑफ सफरिंग, नॉट सफरिंग इटसेल्फ. व्हाट इज द कॉज ऑफ सफरिंग? इट इज इग्नोरेंस. अगर किसी के पास कोई देखभाल करने को नहीं, फॉर एग्जाम्पल जैसे दीदी कह रही है, तो आप उसको क्या सलाह देंगे? ये थोड़ी देंगे कि मैं लेता हूं इंजेक्शन, में तुझे मार डालूंगा. किसी भी इलनेस में आई विल टेल हिम द ग्रेट टीचिंग ऑफ द गीता. आई हैव फेस दिस 100,000 टाइम्स, सो आई थिंक क्वालिफाइड टू स्पीक अबाउट इट. इट्स वेरी इजी टू से डॉक्टर शुड गिव यूथेनेशिया. यू विल फील लाइक ए मर्डरर. यू विल फील लाइक व्हाट आर यू डूइंग. आपके अंदर थोड़ी सी भी कॉन्शियंस है ना, ये फॉरेन कंट्रीज में दे डोंट हैव दिस, तो वो ऐसी बातें करते हैं क्योंकि दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई डू. आई हैव फेस्ड दिस नंबर ऑफ टाइम. आई हैव वर्कड इन टर्मिनली इल केयर, एंड बाय द वे आई एम वर्किंग इन एन ओल्ड एज होम, ओके, वेयर पीपल डाई. तो व्हाट डू आई डू? देयर टाइम्स व्हेन यू कैनॉट डू एनीथिंग, और उस समय आपके पास सब है ना, तो भी कोई नहीं रहता है, क्योंकि आपको ये लगता है कि आप अकेले हो अपनी पीड़ा में. तो अकेले ही हो, कोई आपके पास है भी तो आपकी पीड़ा तो नहीं ले सकता है ना. तो ये पार्ट की अकेले हो, वो तो वैसे ही अकेला है जो पीड़ा में है, क्योंकि आप उसको सांत्वना दे सकते हो, उससे उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है. पेन किलर दे सकते हो, स्टन कर सकते हो. देन कम्स ए टाइम. सो व्हाट डू आई टेल देम? आई टेल देम दैट ग्रेट ट्रूथ ऑफ द गीता. इट्स ए मोमेंट ऑफ इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन. यू वॉन्ट टू बी फ्री ऑफ सफरिंग, टेक अ लीप. व्हाट इज दैट लीप? कॉल ऑन द डिवाइन ग्रेस, सो दैट इफ यू डाई, यू डाई टेकिंग ए लीप. And if you are still living, as long as you are living in that state of consciousness. आप कोई कहता है कि हम ये भी नहीं कर सकते, तो भैया फिर आप अपना रास्ता ढूंढो. But basically it's like that.
No sir, I meant about the case. I mean very popular case in Mumbai where.
I know that lady was living. That yes, Aruna. That is called self-created problem. Because people don't know the occult side. Now, in her case and only in her case, it is not about euthanasia. In her case and only in her case, if you go through the history, now I'm not going into detail, her soul had vanished long back. It was a body like a lump of clay with life force animating it. I have seen such patients also. But doctors ne usko artificial support system pe dal diya. To ye cheez aapne, ye to medical science ne ye problem create ki hai. Artificial, aap dekhiye hamare yahan artificial life support systems kyon nahi bane the? Itna develop kyon nahi kiye gaye the? Kyunki hum ye mante the ki life is a transition, death is a transition from one life to another. So we, if person has to die, at whatever age, let him die gracefully. As such, young people, putting them on ventilators is foolish. So, ye sare hi aapne galat kiya.
And putting them on oxygen?
Naturally, sare hi to aapne ventilator system pe dal diya na. Main iski baat kar raha hu, Aruna ki. I said, this is a unique case. To ab us case mein, at some point, that body was a hub of vital forces. It had nothing to do with that person. To wo enjoy kar rahe hai us par. वो एक अलग चीज है जिसमें आई कैन गो सम टाइम. तो वो यूथेनेसिया नहीं है. उसमें उन्होंने ये डिसीजन लिया क्योंकि दे अंडरस्टूड कहीं ना कहीं कि ये हमने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है. पर अगर कोई कोमा में है 2 साल 3 साल तो आप यूथेनेसिया क्यों नहीं करते हैं? इसकी स्टडीज हैं. इवन निमहांस में एक स्टडी हुई थी जब सेंटर इनॉग्रेट हुआ था, तो आई हैड ओनली गॉन टू इनॉग्रेट देयर सेंटर. तो उसमें वो सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस स्टडीज करते हैं कि कोई अनकॉन्शियस है तो इज एनीथिंग बीइंग रजिस्टर्ड और नॉट. तो दे डिस्कवर्ड कि रजिस्टर होती है चीजें. अब मतलब चेतना तो आपकी अवेक है. नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतना नाम. आप सरफेस पर्सनालिटी को देख के कह रहे हो कोमा में है बेचारा बेचारा. वो बेचारा नहीं है, रिलेटिव्स को प्रॉब्लम हो रही है. तो अब वो जब उस स्टेट में था तो ये भी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर आप कोई उसको अच्छा जेस्चर करते हो. आई टेल माई यू नो रिलेटिव्स ऑफ पीपल हु इफ दे गो इनटू द स्टेट कि आप उसके पास रहिए, अच्छी बातें बोलिए. माई ओन मदर, शी वॉज डिपार्टिंग, तो आई गॉट ए कॉल फ्रॉम सिस्टर कि मम्मी बुला रही हैं तुम्हें. तो 5 बजे हॉस्पिटल बगल में था, तो आई जस्ट रश देयर. तो मैंने कहा मम्मी क्या चाहिए आपको? यदि बेटा बहुत बहुत छटपटा रही हूँ. तो वो उनका बैकग्राउंड जो था, जो भी 2 दिन हुए थे एडमिशन को, मैंने कहा क्या चाहिए? बोली मुक्ति चाहिए. तो मैंने उनके हृदय पे हाथ रखा, मैंने कहा कि आप गो इनसाइड. 5 मिनट बाद बोली नहीं कर पा रही हूँ. तो मैंने उनके सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा अब आप यहाँ पे माँ को याद करो. तो विद इन फ्यू मिनट्स हर होल कॉन्शियस, मतलब हर होल ब्लड प्रेशर ड्रॉप्ड, एवरीथिंग ड्रॉप्ड. तो आई टुक इट फॉर ग्रांटेड कि नाउ शी इज डिपार्टेड. आई प्रेड एंड आई मूव टू दी टू टेल. इतने में वहां जो इंटेंसिविस्ट था उसने देखा, बिकॉज डॉक्टर साहब की मम्मी है. विद इन मिनट्स शी वॉज ऑन वेंटिलेटर. मैंने बोला नहीं कुछ नहीं, अब उन्होंने डाल दिया. अब मेरे लिए ये अननेचुरल डिलेमा हो गया, बिकॉज आई न्यू वॉट आई हैड कम्युनिकेटेड, आई न्यू शी इज विदड्रॉइंग. तो वट डिड आई डू? तो अगले 2 दिन एक एडवांटेज ये हुआ कि कुछ लोग आ गए जो भी थे, जैसे युत्सु था, माई सन ही वॉज इन पांडिचेरी, ही कुड कम, माई वाइफ कुड कम. तो फिर मैंने माँ को, मम्मी को बस यही कहता था, मामा हम सब ठीक हैं, आप आगे की यात्रा पर जाओ, अच्छे से जाओ, खुशी खुशी जाओ, प्रेम से जाओ. एंड देन वन डे, मतलब 2 दिन के बाद दूसरे दिन, ऑलमोस्ट 48 आवर्स और लिटल लेस देन, आई स्टूड बाई हर साइड. आई सेड यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, माँ है, आपकी आगे की यात्रा बहुत सुंदर रहेगी. ये बोल के मैं हटाऊं, अगेन एवरीथिंग ड्रॉप्ड. एंड आई हैड इंस्ट्रक्टेड देम डोंट पुट हर ऑन वेंटिलेटर अगेन. नाउ दैट इज अ डिफरेंट थिंग यू हैव क्रिएटेड. मतलब उनको कोई हमने सिस्टम हटाया नहीं, पर जो हुआ वो आश्चर्यजनक था, बिकॉज वेंटिलेटर वॉज गिवन प्रोलॉन्ग, एवरीथिंग ड्रॉप्ड, पल्स ब्लड प्रेशर एवरीथिंग ड्रॉप्ड. चलता रहेगा, आप मसाज दे सकते हो आर्टिफिशियली. आई सेड डोंट डू आर्टिफिशियल रिससिटेशन. शी लिव्ड अ होल लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ, एंड देन शी डिपार्टेड. देन आई सॉ हर थ्रू अ सीरीज ऑफ ड्रीम एक्सपीरियंसेस, विच जस्ट टू ऐड द फनी साइड ऑफ द स्टोरी, शी हैड आस्क्ड मी व्हेन माय फादर वाज नॉट वेल कि बेटा कितने साल तुम इनको देते हो, येट मैलिग्नेंसी विच हैड स्प्रेड टू. तो मैंने कहा मम्मी आई थिंक 2 साल. तो शी सेड बस इतना काफी है. शी बिलोंग टू दैट ट्रेडिशन कि मैं पहले जाऊंगी. तो वो गई और 10वें 12वें दिन मेरे पिताजी ने ड्रीम देखा. मुझे बताया बेटा मैंने देखा वो ऊपर गई थी आसमान में और वहां से एक रस्सी नीचे गिरा के वो कह रही थी मेरे डैडी को. उस बाबू उस समय जैसे कहते हैं बाबू आओ कब आ रहे हो. मैं समझ गया पापा जाने वाले. तो मैंने कहा हाँ ठीक है शी इज मिसिंग यू डजंट मैटर. आप तो वो तो खूब भक्ति करते थे. एग्जैक्टली 2 मंथ्स आफ्टर अ डेथ ही डिपार्टेड अगेन सडनली. सो देर इज अ वे टू डाई एंड ट्रांजिट जो हम नहीं पढ़ाते हैं ना मेडिकल कॉलेज में ना क्यों. हम जीवन से चिपके रहो डर. और ये वेस्टर्न कंटेक्स्ट में क्यों है क्योंकि उनके लिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. दे डोंट नो हाउ टू डाई ग्रेसफुली. मदर की डिवाइन मदर की ग्रैंड डॉटर ग्रेट ग्रैंड डॉटर लास्ट 2 ईयर्स शी वॉज वेरी क्लोज टू मी एंड वो कहती थी यू नो वन थिंग गुड अबाउट इंडिया शी लव्ड इंडिया. तो इंडिया इंडियन फूड एवरीथिंग. तो कहती हैं कि इंडिया में यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ बिकॉज यू बिलीव इन रीबर्थ. बट वेस्ट में पीपल आर अफ्रेड ऑफ डेथ. मैंने कहा प्रॉब्लम है कि इंडियंस डोंट बिलीव इन देमसेल्व्स सो दे आर एज अफ्रेड ऑफ डेथ. एंड द डे शी डिपार्टेड आई हैड अ सेंस कि शी इज गोइंग टू गो. शी वॉज इन नर्सिंग होम. रात को मैंने बहुत सुंदर एक वो देखा कि एक व्हाइट मेटाडोर में शी केम आउट वेयरिंग ए नाइस फ्लोइंग व्हाइट ड्रेस. एंड आई सेड कहाँ जा रहे हैं पूर्ण दी वेर आर यू गोइंग. पूर्ण प्रेम उनका माँ का दिया हुआ नाम था अदरवाइज. आई वॉन्ट टू ईट सम इंडियन समोसास. शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इंडियन फूड. ओके बाय बाय. शी गॉट इन टू द मेटाडोर एंड वेंट. आई न्यू कि शी इज डिपार्टेड. And she'll, if at all she has to come back, she'll come to India because that was her state. So death is ek aur to hawa, suffering ka hawa, death ka hawa. Second, hasn't the Bhagavad Gita given us the perfect remedy? Remember and fight, and at the last moment, remember the divine. So, aise hospitals hain jahan par ye prarambh ho gaya hai. For instance, apna Gujarat mein hai. करमसद मेडिकल कॉलेज. तो वहाँ पे उन्होंने इवन स्टडी की और हमारे अच्छे मित्र हैं डिवोटी हैं डॉक्टर भालेंदु. तो ये लोग जब डिपार्चर का टर्मिनल इलनेस में वो क्या करते ही नहीं क्या करें हम इसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं दे आस्क या एंड दे गो अराउंड दे प्रे दे इनवोक द प्रेजेंस एंड द रिलेटिव्स आर सो हैप्पी टू अलाउ द ट्रांजिशन ब्यूटिफुली इज वॉट वी हैव फॉरगॉटन. इंस्टेड हम क्या अरे वेंटिलेटर पे डाल दो फियर में मर रहा है. व्हाट ए बैड स्टेट टू डाई इन. यू आर फुल ऑफ फियर. दैट्स ट्रू एब्सोल्युटली ट्रू. तो वो एक अलग चीज है वो तो मेडिकल प्रोफेशन का जो हुआ है. तो ये जो साइंस है अब डिपार्चर के बाद क्या होता है ये भी एक प्रश्न है. तो उस यहीं पर ले लूंगा. व्हाट हैपेंस आफ्टर ए पर्सन लीव्स द बॉडी. Right. So, when there is a departure, soul begins to withdraw. The departure will be painful or less painful or painless, depending on how much you are attached to the body. Body and the world. आप जितना attached होंगे आपको जो खींचेगी ना और वो नट बोल्ट बड़ा टाइटली होता है ना आप रेंच लगा के खोल रहे खोलना है वो बेचारे का जॉब डिस्क्रिप्शन है. तो उतनी पीड़ा होगी. और अगर आप डिटैच्ड रहे हो जीवन में बेसिकली सबसे बढ़िया है अटैच टू द डिवाइन तो आपको पीड़ा नहीं होगी. ये प्रश्न डायरेक्टली माने उत्तर दिया है. उस समय भगवान का स्मरण करना. श्री अरविंद ने इसका बड़ा सुंदर एक एड ऑन दिया है. कहते हैं यस बट इट इज नॉट ए लास्ट मोमेंट बैप्टाइज क्रिश्चियन बैप्टाइजेशन जो मदर टेरेसा करती थी जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज दे दिया. वो मर रहा है तो इसको बैप्टाइज कर दो तो क्रिश्चियन डेथ हो गई. एडिफाइंग क्रिश्चियन डेथ. आई होप यू नो देयर इज अ होल जोक अबाउट इट कि कोई पादरी जा रहा था वहां पे उसको एक रीछ ने भालू ने पकड़ लिया. अब ये मरने वाला है तो इसने कहा क्या करूं. तो उसने उसको एक ही चीज आती थी बैप्टाइज करना. उसने भालू पे पानी मन चढ़ा नाउ यू आर ए क्रिश्चियन, नाउ यू आर ए क्रिश्चियन. अब भालू क्या समझेगा? भालू तो अब मतलब कि क्रिश्चियन होते तो मैं ऐसे मार के नहीं खा सकते हो मुझे, तो भालू क्रिश्चियन बन गया. भालू ने हाथ जोड़े, मतलब देखा क्या हुआ, भालू ने हाथ जोड़े और भगवान को कहता है थैंक यू फॉर गिविंग मी माई डेली ब्रेड. मतलब डेथ को लेके जो हम डरते हैं ना, अरे क्या है यार, डेथ इज बट ए चेंजिंग ऑफ अवर रोब्स टू वेट इन वेटिंग गारमेंट्स एट द इटर्नल गेट्स. हमारी संस्कृति में जब डरते हैं तो मुझे नहीं समझ आता. आई अंडरस्टैंड वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में डरते हैं क्यों, क्योंकि वो एक बार मर गए ना, वो कयामत के दिन तक बेचारे पड़े रहेंगे. ये आई एम नॉट जोकिंग. सो वो चाहते नहीं, वो अलग बात है, मैं जनश्रुति. तो अब वो कयामत का इंतजार करते हैं. अच्छा, कयामत के लिए भी ये कह दिया गया है स्क्रिप्चर. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इस्लाम की ओरिजिनल डॉक्ट्रिन है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दैट, बट एज इट हैज बीन अंडरस्टूड. अब हाउ व्हाट इट हैज बीन अंडरस्टूड, कयामत कब आएगी, इसका भी डिस्क्रिप्शन है. जब सारे यहूदी मर जाएंगे, तो अब वो यहूदों का मानना क्यों, क्योंकि वो ग्रेव से उठेंगे नहीं. लुक एट द स्टूपिडिटी ऑफ द डॉक्ट्रिन, एंड देयर पीपल हु आर स्टूपिड एनफ टू बिलीव इन एंड एक्ट अपॉन इट. दे वॉन्ट कि भाई ये मरे तो हम उठे, क़यामत नहीं आएगी. ये अब हमारे यहाँ ये क़यामत है ही नहीं, हमारे यहाँ तो एवरी प्रलय इज ए न्यू बिगनिंग. तो हम तो ना डेथ से डरते हैं ना प्रलय से डरते हैं, ये कहाँ से हम सबके अंदर. ये तो श्री कृष्ण की सेकेंड चैप्टर में ही स्टार्ट्स लाइक दैट, कि तू कैसा पंडित है, मूर्खों जैसी बात कर रहा है और पंडिताई कर रहा है, उनका शोक कर रहा है जिनका शोक नहीं करना चाहिए, और उसका दिखा रहा है कि तुझे बहुत कुछ आता है. तो ये तो डेथ क्या है, ये एक पैसेज है, ट्रांजिशन है एक लाइफ से दूसरी लाइफ के बीच में. तो क्या डेथ के बाद लाइफ नहीं होती? होती है. सोल का ये गारमेंट है, मटेरियल गारमेंट. आप समझिए कि आपने चार जोड़ी कपड़े पहने, बनियान से लेके कोट तक. तो जब कड़ा वाला कोट है, ये मटेरियल गारमेंट है. तो आप सोल जा रही है नहाने वैतरणी में, तो उसने पहले अपना मेटेरियल गारमेंट, वो जो बाहर का कोट खोल दिया. आप तो नहा नहीं सकते ना ऐसे, तो वो हुआ फिजिकल डेथ. अब फिजिकल डेथ के साथ डेथ नहीं होती है, देयर विल बी ए सेलुलर डेथ गोइंग ऑन फॉर 6-8 आवर्स मिनिमम. उस समय तक आपकी कॉन्शियसनेस किसी ना किसी रूप में होवर करती है. कैसे होवर करती है? प्राणिक और मेंटल बॉडीज में. कोट खोल दिया लेकिन अभी शर्ट बची है, बनियान बची है, तो वो उस स्टेट में होवर करती है. समटाइम्स इट में टेक अप टू 24 आवर्स. इसलिए माँ कभी भी हरी में नहीं थी कि बॉडी को जो भी करना है करो. अब बात आती है क्रिमेशन या बरियल, दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज है. हरीड बर्निंग इज नॉट गुड, क्योंकि यू आर स्टिल होवरिंग अराउंड गैदरिंग ऑल द एक्सपीरियंसेस. अरे मेरा सामान छूट गया, घर में आपने आग लगा दी और सामान रह गया अंदर, तो सारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं सेल्स के अंदर इम्प्रिंटेड, उसको साइकिक बीइंग उससे विड्रॉ कर रहा है. इट इज कैरी दैट, उसकी पूंजी है, तो वो सब विड्रॉ कर रहा है. अगर उस समय बर्न कर दो बहुत जल्दी, तो ये भी एक अच्छी चीज नहीं है. तो जनरली मदर्स एडवाइस वॉज 24 आवर्स. पर बर्न करने का बाद में ये एडवांटेज है कि जो जब डिसइंटीग्रेट होता है प्राणिक बीइंग, पहले तो बॉडी एक कोट उतरा, दूसरा जब उतरता है तो उस समय वो फ्रैगमेंट होता है, और फ्रैगमेंट होके वो पूरे एटमॉस्फेयर में, जिसको हम लोग कहते हैं भूत आदि एलिमेंटल एनर्जीज के रूप में व्याप्त होता है, जो फायर से डिस्ट्रॉय होता है और जल से वाष्ट होता है. इसलिए हमारे यहाँ शमशान से आके नहाने की परंपरा है कि अगर कुछ स्टिक विस्टिक कर रहा है तो वो साफ हो जाएगा. तो अब वाइटल प्राणिक बीइंग में यात्रा होगी आगे की. कितनी देर रहेगा वो अर्थ एटमॉस्फेयर में, जैसा कहा, डिपेंड करता है. अगर वो बहुत अटैच है अपने पैसे से जो उसने कहीं छिपा के रखे थे तिजोरी में, तो वो तो नहीं जाएगा. अब वो तो प्राणिक बीइंग अटैच होता है, आधार तो अटैचमेंट का प्राण है, नॉट द बॉडी, तो वो तो रहेगा. कोई नाक को भेज देगा वहां पर, उसके अंदर थोड़ा एक्टिवेट करके वो रहेगा, क्योंकि इट कैन नॉट इमीडिएटली. लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस भाव से रहा है कि ठीक है, एक शुभ भाव से, एक रिलेटिव डिटैचमेंट, तो वो थोड़े समय के बाद उससे जाने लगता है, प्राणिक क्षेत्र में यात्रा करता है. अगर घर वाले रोना चीखना रुदाली कार्यक्रम कर रहे हैं, हाय चले गए, वो चले गए, अरे जो करना है आप जीवित रहते किसी की सेवा करनी है करो, मरने के बाद अच्छे से बाय बाय करो। अब वो जब आप रो रहे हो ये कर रहे हो तो वो बार बार खींचा आ रहा है, क्योंकि प्राणिक देह के अंदर अटैचमेंट होती है, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए श्राद्ध की परंपरा, परंपरा नहीं ऑकल्ट मेथड। श्राद्ध को अगर आप ध्यान से देखें तो उसकी स्टेजेस होती हैं, एक पिंड बनाते हैं साइड में रखते हैं, है ना, उसके बाद आप एक पिंड उसके लिए बनाते हैं और एक साइड में रख दिया जाता है। साइड में क्यों? क्योंकि अब वो इन्वोक कर रहे हैं प्राणिक सत्ता को, तो बहुत सारी प्राणिक सत्ताएं संसार में आएंगी, तो उनके लिए वहां रख दिया गया, तुम उधर जाओ। मैंने ये देखा है होते हुए। उसके बाद फिर वो जो भी उनके मंत्रोच्चार विधि है उसके बाद वो पिंड दान करते हैं, और तब वो कहते हैं कि अब कभी कभी गौ का दान इत्यादि इत्यादि करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ द ट्रेडिशन इन डीपर सेंस वगैरह, वो लंबा विषय हो जाएगा। फाइनली जैसे कि अब वो वैतरणी को पार कर गए, जब वैतरणी पार कर जाते हैं तो आपके जितने भी अटैचमेंट वाले धागे वहां तोड़ दिए जाते हैं। ग्रीक मिथोलॉजी में भी है स्टिक्स नदी, तो जब वो सारे हटा दिए जाते हैं, रब ऑफ सुपर रिन का वो पानी है, तो आप जैसे ही वहां पर जाते हैं अब आप इधर क्रॉस ओवर नहीं कर सकते, तो तब आप क्या हो गए? आप पितृ हो गए, जो देवता के रूप में चले गए। यू कांट कम फ्रॉम देयर, एंड इवन इफ यू आर अट्रैक्टेड टू दिस वर्ल्ड यू कैन ब्लेस फ्रॉम देयर और हेल्प फ्रॉम देयर फॉर सम टाइम, लेकिन थोड़े समय के बाद वहां से भी निकलता है, क्योंकि अब क्या हुआ, शर्ट खोली आपने प्राण जगत में, अब बनियान है, बनियान है आपकी मेंटल बॉडी, थॉट बॉडी। फिर उसके बाद वो अब प्राण जगत में, ये हेल और हेवन है जिसकी बात होती है, व्हाट आर दोज हेल्स एंड हेवन, प्राण जगत में ऐसे लोक हैं जहां पे यू फील वेरी जॉयस हैप्पी। तो अगर आपके शुभ कर्म है, जैसे आपने यू डाइड ड्यूरिंग ए बैटल, नॉट एनी बैटल बट ट्राइंग टू डिफेंड, सब चीज डिस्टॉर्ट हो गई है ना। हाँ देखो, हम कहते थे ना बॉडी को उड़ा लो तुम पहुंच जाओगे, जब आप मरते हो इन ट्राइंग टू लेट से डिफेंड अ नेशन और फॉर ए नोबल कॉज, तो आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अब यहां बाजी प्रभु को भी टच कर लें, बाजी प्रभु में क्या होता है इसी का एग्जाम्पल है, एक अकेला सौ पर भारी। तो बाजी प्रभु की स्टोरी रियल स्टोरी है, इसको शेयरविंद ने पोयम के रूप में इमोर्टलाइज किया है। तो बाजी प्रभु इज द चीफटेन ऑफ सम 50 ऑड आर्मी ऑफ मराठास, और ऑपोजिट में उनके 20,000 पठान, राजपूत, मुगल्स, अफगान्स, ये सारे हैं, ये ऊपर चढ़ रहे हैं हिल के ऊपर, और वो हिल क्रूशियल है शिवाजी के लिए। हिल पर जो जाता है वो एडवांटेज उसका हो जाता है, कारगिल का वार। तो अब उनका काम है कि हिल पे चढ़ने से रोकना, लेकिन ये जो आ रहे हैं इनके पास आर्मामेंट से नंबर है, शियर नंबर, तो शिवाजी को आना है बंदूकें लेके, तोप लेकर के, तो दे हैव टू होल्ड दिस प्लेस टिल शिवाजी कम्स। एक बार आ जाएंगे, पूरी आर्मी आ जाएगी, तब तो नो बिग डील। तो सुबह से शाम तक ये डिफेंड करते हैं। तो उसके चीफ टेने के बाजी प्रभु है, तानाजी मालसूरे पर तो फिल्म भी बनी थी, तानाजी उनका तो सिंहगढ़ का था, और ये फोर्ट, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द फोर्ट। तो जब तानाजी से वो बाजी प्रभु एक पॉइंट पर कहते हैं अब हमारे पास 20 बचे हैं, आप थोड़ा देख आओ कि कहाँ है शिवाजी। तो वो जाने के पहले कहते हैं बाजी प्रभु से कि लास्ट वाला पार्ट, बाजी प्रभु से कहते हैं आई एम जस्ट फ्लोइंग विद इट, क्योंकि ये कनेक्टेड है, क्वेश्चन भी है। तो वो बाजी प्रभु से कहते हैं तानाजी मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। उनको पता है कि बाजी हैज डिसाइडेड कि मैं तो आप बलिदान दूंगा, एंड इस स्ट्रेटजी की बोथ ऑफ अस शुड नॉट डाई। तानाजी मालसुरे इज ऑल्सो वेरी वंडरफुल फाइटर, तो वो बड़े स्ट्रेटजिकली उनको भेज देते हैं। तो कहते हैं मैं जा रहा हूं, हम स्वर्ग में मिलेंगे, लेकिन पहले मैं जब आऊंगा तो तुम्हें ऐसी अग्नि दूंगा कि सारा संसार देखेगा, ऐसी अग्नि जैसी किसी ने नहीं दी होगी। कहने का मतलब मैं तुम्हारी चिता जलाऊंगा, तुम्हारे शव को मैं जाने नहीं दूंगा। वो बहुत बड़ी बात होती थी, शव का सम्मान, पूरे ट्रोजन वार में ये दिखाते हैं डिटेल में। तो बाजी प्रभु कहते हैं ओ तुम मुझे अग्नि दोगे। वो कहते हैं बाजी प्रभु तुम मुझे अग्नि दोगे, तुमने क्या सोचा है ये 5 फुट 6 इंच ये हूं मैं, ये चीथड़ा हूं मैं। वो कहते हैं कि बाजी प्रभु कहते हैं तानाजी को, तानाजी डोंट वरी, मैं इन प्रतीक्षा करूंगा जब तुम भी इसी प्रकार से अपना बलिदान देके आओगे, तब हम आपस में बातें करेंगे, हाउ वॉज योर डे। तो तैयार है और तब वो लड़ते हैं और वो जो वर्णन है ना उनका डेस्परेट जो फाइट होती है और 20 लोग गार्ड कर रहे हैं और धीरे धीरे, और डिस्क्रिप्शन इतना विविड है कि जैसे जैसे वो चढ़ते हैं बाजी का अटैक करते हुए, फिर 5 बजते हैं, फिर 3 बजे एंड ही इज होल्डिंग द फोर्ट, सब ही इज इंजर्ड वेरी बैडली। तब वो उनको कोई कहता है बाजी बाजी आई हियर शिवाजी कमिंग, द ट्रम्पेट्स आर साउंडिंग। तभी कहते ओह, एंड किसी का बर्छा पियर्स करता है, बेयर करते हैं, उस समय उनको काली का दर्शन होता है, माँ दुर्गा का। अब ये क्या है वो काली का दर्शन लास्ट में क्यों हो रहा है? काली वॉज इंस्पायरिंग हिम, काली वॉज मूविंग हिम। अब जब ये सब हो गया तो काली लीव्स हिज बॉडी एंड टेक्स हिम एज ए पूर्ण आहुति, दैट्स वाई शी कम्स आउट ऑफ हिज बॉडी। और जैसे ही शी कम्स आउट ही फॉल्स एंड हिज बॉडी इज फॉलन एट दी अल्टर, एंड एज ही फॉल्स शिवाजी कम्स। और जब उसको देखते हैं तो अपने सिर का मुकुट उतार के बाजी प्रभु के मस्तक पर रखते हैं, कहते हैं ऐसा तो कोई नहीं देखा मैंने। एंड ऑफकोर्स वो फोर्ट उनके कब्जे में आ जाता है, बिकॉज आफ्टर दैट वो तो वैसे ही भाग रहे थे। जस्ट आई विल जस्ट रीड, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू स्किप, बट मेरे लिए तो इस पोयम का, हाँ एक मिनट में पढ़ लूँ जरा, मेरे लिए इस पोयम का बड़ा पर्सनल महत्व है। एक बार मैं बहुत सीवियर डिसेंट्री हो रही थी, काम करके आया था शिवरबिंद भवन में, हम लोग सुबह जाते थे 5 बजे, पूरा क्लीनिंग व्लीनिंग करते थे, आते थे, तो आई वॉज हैविंग सीवियर डिसेंट्री, बट कहा जाऊँगा जाऊँगा, व्हेन आई केम आई कोलैप्स्ड इन द लिफ्ट। तो हॉस्पिटल पास में था, बुलाया गया, ले गए, ड्रिप ड्रिप शुरू हुई। अब बगल में था अपना हॉस्पिटल, माई फ्रेंड केम, अभी वो तो आर्म्ड फोर्सेज में डायरेक्टर जनरल है। तो उसने कहा आलोक सर एनी थिंग यू नीड, मैंने कहा हाँ दलजीत तू जरा बाजी प्रभु ले आ और प्लीज रीड इट। तो तब तो ये इनकार्नेट वर्ड वगैरह नहीं था, वो लेके आया और उसने जो पढ़ी हाफ एन आवर में आई वॉज सिटिंग इन सो मच चार्ज विद सच ए जॉय। दिस पोयम इज ऐसा वीर रस है इसके अंदर कि ये डेली मृत मृत को उठा दे, कम से कम मेरे साथ तो इसका ही अनुभव हुआ है। ये लास्ट वाला पार्ट, जब वो भवानी का दर्शन होता है, वंस मोर दे केम, हु आर दे द एनिमीज, वंस मोर दे केम एंड ऑलमोस्ट हेल्ड, देन रॉथ रोज इन द प्रभु एंड ही रेज्ड हिमसेल्फ, माने गिरते उठते फिर उठा लेते हैं, इन सोल टू मेक एन एंड, बट इवन देन ए स्टिलनेस फेल अपॉन हिज मूड एंड ऑल दैट गॉड लाइक इम्पल्स फेडेड फ्रॉम हिज हार्ट एंड पासिंग आउट ऑफ हिम ए माइटी फॉर्म स्टूड विजिबल। अंत में उनको दर्शन हो रहा है टाइटेनिक स्कारलेट क्लैड, डार्क एज ए थंडर क्लाउड विथ स्ट्रीमिंग हेयर ऑब्सक्योरिंग हेवन एंड इन हर सॉवरन ग्रास्प दिस सोर्ड द फ्लावर द बून द ब्लीडिंग हेड भवानी। अब उन्होंने इनकी लास्ट आहुति स्वीकार की है। देन शी वैनिश्ड, द डे लाइट वॉज ऑर्डिनरी इन ए कॉमन वर्ल्ड एंड बाजी न्यू द गॉड इज फॉर्मिडेबल who watches over India till the end. Even then a sword found out his shoulder sharp, a Mughal lance ran grinding through his arm. Fiercely around him gathered in a knot the mountaineers बट बाजी विद ए ग्रोन, लगता है कि एक सिंह के जैकॉल्स ना अटैक कर रहे हैं, मिशन हो गया है, मोरो देश पांडे टू द अदर साइड, हेसन ऑफ द ब्लैक गॉर्ज एंड ब्रिंग मी वर्ड, राइट्स एनी फ्रॉम द वेस्ट और कैंस दाउ हियर द रायगढ़ ट्रम्पेस्ट ब्लो। एक ही चीज जानने को रुके हैं, शिवाजी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, देश पांडे गो एंड फाइंड आउट। देश पांडे डेस्परेट ही लेबर्ड इन हिज ह्यूमन स्ट्रेंथ टू पुश द मुगल फ्रॉम द गॉर्जेस एंड विथ स्लो कंपल्शन, मतलब उनको धक्का दे रहे हैं फिर भी, विथ स्लो कंपल्शन बाय हिज साइड फेल फास्ट मराठा एंड मुगल एंड ऑन हिज लिम्स द सोर्ड्स ड्रैंक ब्लड ए सिंगल रेडनेस ग्रू। अपने वीरस को ऐसे पढ़ाया, ब्लड्स ब्लड इज मिंगलिंग एंड सिंगल हिज बॉडी येट ही फॉट देन एट हिज साइड घेस्टली विद वुंड्स एंड इन हिज फायरी आईज डेथ एंड रिजॉइसिंग ए डायर फिगर स्टूड मोरो देश पांडे बाजी आई हैव सीन द रायगढ़ लैंसेज बाजी आई हैव हर्ड द ट्रम्पेट्स कॉनकरिंग विद हिज क्राई द डिन ही स्पोक देन डेड अपॉन ए मुगल कॉप्स फेल प्रोन। And Baji with a gruesome hand, wiping the blood from his fierce, staring eyes, saw around him only 15 men erect. Then he fights to the end and eventually he falls. ये जो वर्णन है ना, I could just, I mean, very powerful it is, कि ये हम इनके संतान हैं, वंशज हैं, हम कहां मृत्यु से डरने लगे, हमें पीड़ा हो रही है, हमको मुक्त कर दो, हम are we that? हम तो पीड़ा को ऐसे पीते हैं कि ये हमारा ये आशीर्वाद है, जो हमने उस दिन सुना था ना अर्जुन अभिमन्यु को जो कहते हैं विराट, उसमें कहते हैं वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ सफरिंग डेथ, वी आर अफ्रेड ऑफ ओनली वन थिंग, अनार्य भाव, अधर्म, वो करते हुए हम ना मरे, अदरवाइज दैट्स वे ऑफ लाइफ, दिस व्हाट द आर्य सभ्यता इज। सॉरी आई वुड जस्ट फ्लो इन टू इट फॉर अवर्स, एंड ये एक टॉक है वैसे पूरी की पूरी इस समय जो, वो तो एक अलग चीज है, वो हम कभी, पर बाजी प्रभु को आश्रम में इनेक्ट किया गया था, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड आई थिंक आई विल बी एबल टू फाइंड द वीडियो एंड आई कैन सेंड टू हूएवर इज इंटरेस्टेड। द डांस ड्रामा वॉज डन वेरी ब्यूटिफुली, ऑफकोर्स श्री अरविंदो's रीडिंग इज अमेजिंग, you cannot just compare anything to that even remotely, but it was done well. Jo jinki death hoti ashram mein, while we were talking about so ab aisa hai, ha theek hai, nahi we can finish it, we are on death. तो ये तो नॉर्मल कोर्स है डेथ का, कि उसके बाद मेंटल बॉडी, फिर क्या होता है जब ये सब उतर गया तो सोल चली जाती है, मुझे बेखुदी कि तूने भली चाशनी चटाई भगवान की बेखुदी में चली जाती है, एंड वहां पे क्या होता है इसका वर्णन सबसे सुंदर सावित्री में है, बुक 2 कैंटो 14 वर्ल्ड सोल में, कि देयर यू वेट, यू गैदर बैक ऑल द थिंग्स ऑफ द पास्ट, देन यू प्लान द फ्यूचर। प्लान ऐसे नहीं यार, पैसे होने चाहिए बहुत जरूरी है, अमीर घर में जाओ, नहीं, ये बच गया था करना, हृदय में वीरता तो थी लेकिन कभी एक्सप्रेस नहीं की, तो वो ऐसे जीवन में जाएगा जहां शायद उसका शॉर्ट लाइफ स्पैन हो, लेकिन उस अनुभव को प्राप्त करेगा। रिमेंबर somebody, अर्जुन खेत्रपाल का नाम सुना है, विक्रम बत्रा का नाम सुना है, लगता था कि मरने के लिए एक पैदा हुए हैं, ये दिल मांगे मोर, तो ये यू रीच दैट पॉइंट, कैंटो 14 निकाल दो मैं ढूंढ लूंगा, तो वो पार्ट जो है जहां पे वो तैयार करती है, कैसे प्रोजेक्ट करती है फ्यूचर, जो अनुभव अभी बचा हुआ है, द अनफुलफिल्ड लाइन्स ऑफ डेस्टिनी व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट। ये नहीं कि मैं अमीर घर में जाऊं, किसी ने माँ से पूछा कि बीथोवेन इतना बड़ा म्यूजिक था, नेक्स्ट लाइफ में आके और भी बड़ा म्यूजिशियन होगा शायद, माँ ने कहा नो, मे बी ही विल बिकम ए शू मेकर, ए पुअर शू मेकर, इट इज अप्रोचिंग द सेम प्रॉब्लम फ्रॉम ए डिफरेंट एंगल। What is the problem of life is ignorance. Maybe a shoemaker will be better able to because he has nothing else to, तो वो शायद अपने अंदर में प्रयास करे. तो ये प्रोसेस चलती रहती है जिसमें रिवार्ड पनिशमेंट नहीं, इट्स लर्निंग ग्रोइंग, लर्निंग ग्रोइंग, लर्निंग एंड ग्रोइंग. स्टिल हम वहां पहुंचते हैं जब हम तैयार हैं उस ग्रेट कंज्यूमेशन के लिए. और वो ग्रेट कंज्यूमेशन क्या है वो भी हम पढ़ लेंगे. बट यहां पर द वर्ल्ड सोल, इसमें इसका वर्णन है बहुत सुंदर. किसके पास जाते हैं उनका भी बड़ा बड़ा, बड़ा सुंदर वर्णन है वो बीइंग कि ओके किनके पास जाते हैं हम मरने के बाद, क्यों लोग इतना परेशान होते हैं. आई विल टेल यू. पहले ये पार्ट पढ़ लें. द साइलेंट सोल ऑफ ऑल द वर्ल्ड वॉज देयर. ए बीइंग लिव्ड ए प्रेजेंस एंड ए पावर. ए सिंगल पर्सन हु वॉज हिमसेल्फ एंड ऑल. ये भगवान का जो यूनिवर्सल डिवाइन. One who could love without return for love. जो हम ढूंढते हैं ना, इन्हीं को ढूंढते हैं. Meeting and turning to the best, the worst. उनका केयरेस ही काफी है. सारी पीड़ा सब कुछ all goes away. It healed the bitter cruelties of earth, transforming all experience to delight. आपके सारे जो जो कई चीजें हैं वो you don't, it's not mathematics. बुक वन कैंटो थ्री भी निकाल देना. तो यू जस्ट गो थ्रू ऑल दिस एंड वो ज्यादातर चीजें तो वो वाइप ऑफ हो जाती हैं जो केवल अनफिनिश्ड हैं और जो बड़े स्ट्रांग इंटेंस मोमेंट्स हैं विच इज व्हाट इज लाइक उत्कट कर्मा, सुसाइड, मर्डर और इवन सम ग्रैंड ब्यूटिफिक थिंग जो आप परस्यू नहीं कर पाए, वो चीजें लेकर के सोल आती है. और तब वो देखती है कि ये कहां मुझे अब ये बेटर पाथ मिलेगा, किस घर में जाऊं तो ज्यादा. तो मान लीजिए वो एक राजा के घर में जन्मी थी तो उसने देखा ये तो हर समय जेड सिक्योरिटी, मैं प्रिजनर हूं कि यही ना, जेड सिक्योरिटी मींस यू आर ए प्रिजनर. आप नहीं रुक सकते गाड़ी और गोलगप्पे सड़क पे, चलो खा लो बेचारे. बहुत बड़ा कुर्बानी है ये, है ना. आप नहीं ऐसे जॉयसली नहीं कह सकते हाँ पंछी बनो उड़ के चलो मुक्त गगन में, आप नहीं कह सकते. आप have to stay inside that. तो ये जो लाइफ है रियलाइज किया कि इसमें कुछ नहीं है, ये केवल बाहर की टीम टाम, अंदर में खाली. तो आप एक गरीब फार्मर के घर में पैदा हुए, उड़ीसा के एक गांव में पैदा हुए जहां पैसा वैसा ज्यादा नहीं था, ऐसे घर में पैदा हुए. लेकिन बचपन से आपने माँ का नाम सुना. ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. सो दिस इज हाउ द जर्नी गोज ऑन. और ये कब तक चलती है, बड़ा सुंदर इसका वर्णन है. द फॉर्म डिसीव्स, दिस बॉडिली अपियरेंस इज नॉट ऑल. द फॉर्म डिसीव्स, द पर्सन इज ए मास्क. हिड डीप इन मैन सेलेस्टियल पावर्स कैन ड्वेल. हिज फ्रेजाइल शिप कन्वेज थ्रू द सी ऑफ इयर्स एन इनकॉग्निटो ऑफ द इम्पेरिशेबल. सोल को कहते हैं इनकॉग्निटो, उसका कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, हम खुद नहीं जानते. वो इस जहाज में छिपा हुआ बैठा है. तो इनकॉग्निटो. ए स्पिरिट दैट इज ए फ्लेम ऑफ गॉड अबाइड्स, ए फायरी पोर्शन ऑफ द वंडरफुल आर्टिस्ट ऑफ हिज ओन ब्यूटी एंड डिलाइट, इमॉर्टल इन अवर मॉर्टल पॉवर्टी. दिस स्कल्पचर ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द इन्फिनिट, ये सब साइकिक बींग का डिस्क्रिप्शन है. दिस स्क्रीन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड इनहैबिटेंट, इनिशिएट ऑफ हिज ओन वेल्ड मिस्ट्रीज. वही चूज करता है, कोई पाप पुण्य का इशू नहीं हो रहा. कहा जाता है कौन सा सब्जेक्ट लोगे, हाँ हिस्ट्री में मैं कमजोर था, जाऊंगा. द सोल चूजेस व्हाट एक्सपीरियंस यू डंड गो. हाइट्स इन ए स्मॉल डम सीड इज कॉस्मिक थॉट, डिटरमाइनिंग प्रीडेस्टिन्ड शेप एंड एक्ट. पैसेंजर फ्रॉम लाइफ टू लाइफ, फ्रॉम स्केल टू स्केल, चेंजिंग हिज इमेज सेल्फ फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्म, ही रिगार्ड्स द आइकॉन. आइकॉन क्या है, बॉडी. आइकॉन होता है ना कंप्यूटर में, icon growing by his gaze and in the worm foresees the coming god. At last, ये कब तक चलता रहता है. अब normally होता है ये घूमता रहता है, मुक्ति हो जाती है, लेकिन शेरविंद कुछ और इसमें बता रहे. At last, the traveler on the in the paths of time arrives on the frontiers of eternity. In the transient symbol of humanity draped, he feels his substance of undying self and loses his kinship to mortality. Psychic being ka anubhav aapko mrityu se uska 0.0000% bhay bhi sab samapt ho jata hai. Because you know you are immortal. You know death is the biggest hoax going on planet. So you stop being, fear goes away. A beam of the eternal smites his heart. His thought stretches into infinitude. All in him turns to spirit vastnesses. His soul breaks out to join the oversoul, psychic and the central being. His life is oceaned by that super life. He has drunk, my favorite line, he has drunk from the breast of the mother of the worlds. A topless supernature fills his frame. She adopts his spirit's everlasting ground. Her face is seen through his face. Her eyes through his eyes. Such an identification with the divine is possible in this human body. So, ye pura description hai. Ab, koi special passages bhi hai diplomatic channel.
Mera question alag hai. Like, my question is ki, jab Savitri mein ek line hai that none can reach heaven who hasn't gone to the hell.
Haan.
तो जिस सोल ने डिवाइन मदर को चूज किया है वो सोल का जर्नी
ओके आई गॉट दैट ठीक है आई गॉट दैट क्वेश्चन दैट इज नथिंग टू डू विद आफ्टर डेथ दिस हेल एंड हेवन इज नॉट अबाउट आफ्टर डेथ ये जो है वो अलग है कि क्या कोई स्पेशल डिप्लोमेटिक पैसेज है तो है वैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है जो भगवान का स्मरण करते हैं वो ऐसे ही जाते हैं स्पेशल पैसेज में उसमें आपको पांडिचेरी होने की जरूरत नहीं है जो लोग भगवान के नाम का स्मरण करते हुए जाते हैं श्रीमद भगवत गीता क्या कहती है इफ योर कॉन्शियसनेस इज कंसेंट्रेटेड ऑन द लॉर्ड यू डोंट गो टू डेथ यू गो टू द लॉर्ड पर कौन स्मरण रख पाता है वहां गरुड़ पुराण में एक चीज तो जबरदस्त है जब वो बता देना डेथ के समय क्या होता है गोरी डिस्क्रिप्शन आसमान नीचे दिखता है पृथ्वी ऊपर हो जाती है आप डिसोरियंट हो जाए सारी जिंदगी अगर आपने जुड़े रहे कि हम लास्ट मिनट वही है ना इट इज नॉट ए लास्ट मोमेंट एडिफाइंग क्रिश्चियन डेथ अच्छा हम अंतिम समय पर कर लेंगे भगवान का नाम नहीं होता जी जिससे जुड़े होते हैं वही सब आने लगता है पर वो एक पार्ट है दूसरा डिप्लोमेटिक चैनल माने बनाया क्या डिप्लोमेटिक चैनल बनाया वो जब अल्जीरिया में थी 1907 या 6 की बात है ये काम था उनका कई ऐसे काम थे उसमें उन्होंने एक पैसेज बनाया वाइटल वर्ल्ड से जनरल कैटेगरी के लिए भाई अब स्पेशल वीआईपीज तो वीआईपीज हैं जो भगवान का स्मरण कर रहे हैं भक्त हैं उनकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है वो तो ऐसे ही प्रॉब्लम कुछ नहीं है लेकिन जो साधारण जन है मासेस तो उन्होंने एक पैसेज बनाया वाइटल वर्ल्ड से कि अगर थोड़ा भी फेथ है तुम्हारे अंदर तो तुम ऑटोमेटिकली उस पैसेज में आ जाओगे सो यू विल नॉट गो थ्रू ऑल दीज फोर्सेस जो आपको खींचती हैं हेलिश एंड बुलिश सो यू विल बी पुट इन दैट पैसेज एंड यू विल गो थ्रू द वाइटल वर्ल्ड यू डोंट नीड टू डू श्राद्ध नथिंग यू विल बी सेफ फेथ होना चाहिए फेथ आपको है कि नहीं ये आपको देख नहीं वो आप कर लीजिए दिल को सहलान क्या है बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है पर एक सिंपलर तरीका अब ये थर्ड पार्ट है जो माँ ने बताया कि यू डोंट नीड टू डू ऑल दोस सेरेमनीज वो अकल्ट नॉलेज भी नहीं है लोग करते जाते हैं पर बरसों अब चला गया रीबर्थ भी हो गया होगा हालांकि उसकी लॉजिक कुछ और है वो केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं होता है बल्कि वो होता है उस सारी जो सोल्स भटक रही होती हैं तो ये उनके लिए हर व्यक्ति हर साल मनाता है ये वेस्ट में भी कंसेप्ट है ऑल सोल्स डे बोल करके है जस्ट आई विल कंप्लीट तो नॉर्मली तो एक दो साल कई मैक्सिमम 3 साल यूजुअली फ्यू मंथ्स उसमें नहीं करें आप यही तो प्रॉब्लम है इसीलिए पंडितों ने कहा हर साल करना चाहिए क्योंकि नहीं करना चाहिए क्योंकि पंडितों का आप ध्यान नहीं रखेंगे वो भी अब बिचारों ने सब छोड़ छाड़ के शास्त्रों का अध्ययन किया है बच्चों को पढ़ाने की उनकी भी इच्छा है हाँ तो अब देखिए अब भाई हमको सबका साथ सबका विकास तो हमको सबका सोचना चाहिए लेकिन वो ये जो आप करेंगे प्रोसेस ये कोई जरूरी नहीं कि आपके जो पूर्वज हैं क्योंकि वो तो चले गए लेकिन बहुत से ऐसे अर्थ एटमॉस्फेयर में हैंग करती हैं जिनका कोई करने वाला नहीं है, तो ये उनके लिए लाभदायी होता है। इसलिए ये क्योंकि अगर हम बोलेंगे सबके लिए करो तो इंडियन एवरेज इंडियन बोले हमारा तो बंदा नहीं है, हम क्यों करें। तो ये हमारे स्वार्थ से छुटकारा, आप करो, ये सब हो रहा है, यज्ञ तर्पण वो पितृपक्ष है, श्राद्ध का मास है, तो सब लोग यही कर रहे हैं, तो वो कौन सी किसकी किसको लग जाए, हेल्प हो जाए। लेकिन जो तीसरी बात माँ ने बताई है कि ये सब करने की जगह आप 12 दिन या 10 दिन या 4 दिन आपके ऊपर आप यू रीड सावित्री मेडिटेट, माँ ने सावित्री पढ़ने को नहीं कहा है, बट आई एम जस्ट सेइंग यू सेंड थॉट्स ऑफ लव टू प्रोटेक्ट, देन वो उसको रिसीव करता है, क्योंकि प्राण जगत में आप प्राणिक स्पंदनों को रिसीव करते हो, तो आपके अंदर से जब थॉट ऑफ लव है तो उसको सिक्योरिटी फील होती है, क्या somebody loves me, cares, नहीं तो एकदम अकेला महसूस करता है ना, अटैच्ड रहा है सबके साथ, तो किसी का एक लव चाहता है। यू मेडिटेट प्रे टू द डिवाइन, तो गीता पढ़ना सावित्री ये सब उसका पार्ट है, एंड देन इट विल ट्रांसिट। हाँ, तो दे आर डिफरेंट वेज पीपल डू इट। लास्ट जो है जो माने किया है वो है बट दोज हु डाई इन पांडिचेरी लीव देयर बॉडी इन पांडिचेरी, वो तो एक कदम आगे चली गई ना सब चीज से, वो उनका ये है कि दे डोंट गो टू डेथ, शुरबिंदो हिमसेल्फ कम्स एंड टेक्स देम। तो माँ ने पूछा फॉर एवरी वन रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट, मतलब किसी ने सुसाइड कर लिया तो, माँ कहती है शुरबिंदो से एश्योर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेट। एक अलग ज्ञान गंज है, रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेट दे गो टू शुरबिंदोज धाम, दे डोंट गो टू डेथ। अब इसकी समस्या ये होती है इस ट्रूथ की कि बहुत सारे लोग कहते हैं हम पांडिचेरी में आके मरेंगे। मैं हो चुका है, मैंने देखा है, एंड इट्स ओके, नहीं इट्स ओके, आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद इट, इफ यू कैन रियली डू इट फाइन। और दूसरे ऑन अदर साइड कुछ लोग ऐसे हैं कहते हैं ये पार्शियलिटी क्यों, अरे यार पार्शियलिटी क्या है, पूरी जिंदगी एक बंदे ने दे दी भगवान को, अब इतना तो होने दो ना कम से कम। ए पर्सन हु इज गॉन लिविंग इन द आश्रम फॉर ऑल हिज डिफेक्ट्स एंड डिफिकल्टीज, कम से कम उसने एक स्टेप तो लिया कि अपनी नौकरी चाकरी सबको दांव पे लगा दिए, बीवी बच्चे साथ भी लेके आया तो वो भी दांव पर ही लग गए एक तरह से। क्योंकि वहां वो नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ तो जिएगा नहीं, वो ये तो नहीं कह सकता कम लेट्स गो फॉर ए हॉलीडे, पैसे भी नहीं होंगे ना वो, तो अब वो जब इस अवस्था में आ गया है तो भगवान अगर इतना कर देते हैं उसके लिए कि पूरे जीवन तूने मेरे चाकरी के भाव से मेरी सेवा की है, की नहीं अलग बात है, तो चल मृत्यु के बाद मैं तुझे ले लूंगा, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम। अब इसमें भी अगर जेलस लोग फील करते कि भगवान उनके साथ पार्शल क्यों है, अरे कम ऑन बी ए स्पोर्ट। सो एनी वेज, हाँ कहिए मदन गोपाल जी। ये श्री अरविंद ने, ये चंपकलाल जी का कमेंट है उस पर, यस कि सेम थिंग जो एक काशी क्रिएट हुई थी, तो अब काशी की हिस्ट्री में ये है कि जहां पर ये, तो हमको मान के चलना चाहिए बिल्कुल। अब लोग कहते हैं कि कबीरदास जी ने ये प्रूव करने को, तो वो मगही में जाके उन्होंने प्राण त्यागे, मगही इज नोन कि यहां जो मरेगा वो हेल में जाएगा, बट कबीर की कैटेगरी अलग है, जो भक्त है भगवान का ही डजंट नीड एनीथिंग। चंपकलाल जी ने तो जंतराल में शरीर छोड़ा, तो इट डजंट अप्लाई, इट इज फॉर ए सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल, और उसमें बहुत सारे अनुभव है। अब आया हेल और हेवन वाला, नहीं वो जो है वो उसको इससे अलग कर दो। वो जो श्री अरविंद डिसेंट इन टू नाइट में बता रहे हैं, नन कैन रीच हेवन हु हैव नॉट गॉन थ्रू हेल, ठीक है अगर आप मृत्यु के बाद का अनुभव लो तो यू हैव टू गो फर्स्ट थ्रू द वाइटल वर्ल्ड्स, लोअर वाइटल एंड देन यू गो इनटू द हायर, सो वो एक प्रोसेस है। लेकिन यहां बात कर रहे हैं कि आप जब योग साधना का मार्ग लेते हो, तो अब देखिए आप दुबई में रह रहे हो, लेट्स टेक दैट, देर आर पीपल उसे बड़ा एंजॉय करते हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं वो। अब अगर आपने वहाँ जो दिन होते हैं ना रोजे, उस समय आप पानी के साथ पकड़े गए, ये मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ, मेरे खुद के साथ हुई है, पकड़ा नहीं गया, किसी ने कॉशन कर दिया सर पुलिस विल कैच यू, मैंने क्यों यार, नहीं आप पानी नहीं पी सकते है. तो मैंने कहा आप करूं क्या, प्यास लगी है. तो बाथरूम में गया, पानी पिया मैंने. मैंने कहा हम भारतीय हम जुगाड़ जानते हैं. उसके बाद अब भूख भी लगी है, भूख तो चलो हो जाएगा. अब सिंस आई एम टॉकिंग ऑफ दिस स्टोरी हेल और हेवन का द ड्यूप्लिसिटी, तो आप कहाँ है खाना, हम लोग चार लोग हैं खाना कोई कहीं, ऐसे करते करते माँ की ग्रेस है, सडनली वी टम्बल्ड अक्रॉस, जैसे एलिस इन वंडरलैंड है ना, वो होल में जाती है, एक पता नहीं ऐसे लग रहा था जैसे दीवार है, लेकिन हमने देखा इधर कुछ खुला हुआ है. जैसे कि सारे वहां फूड स्टॉल, ये खाना वो खाना, वेराइटी खाने ही खाना, हिपोक्रेसी एट द हाइट. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. पर अगर आप वहां पे अगर उनसे ये कहोगे नाउ आई डोंट आई विल लिव हियर बट आई रिवोल्ट अगेंस्ट दिस, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट दिस इज नॉट ए वे, ये रूल आपका गलत है, ये नियम गलत है, आपको नियम बदलना होगा, तो सेख क्या करेगा, डाल देगा जेल में. आप देखो डिपोर्ट नहीं करते हैं वो, वोट सीधा डिपोर्ट, जो अभी अच्छी नीति अपनाई है ना योगी जी ने, नो बेल नो जेल, सीधा प्रभु से मेल. तो अब वो वाले प्रभु तो बड़े डेंजरस हैं, वो तो ये करते हैं भाई हम शेख के आर्बिट्रेरीनेस है, उसको मन किया तो फ्री कर देगा. अभी कुवैत में हुआ था, उसको गुस्सा आ गया तो कहेगा कि फांसी. तो जब आप योग लेते हो तो आप क्या कह रहे हो, प्रकृति के जो नियम हैं अब मैं उनको बदलूंगा. तो प्रकृति तक तो ठीक है, प्रकृति तो कहती ठीक है बदले कोई बात नहीं. जैसे मुझे किसी ने कहा पानी आप सामने मत पियो पुलिस पकड़ लेगी. अब पुलिस कौन है, एडवर्स फोर्सेज है वहां की, पर ये प्रकृति कौन है, ये आसपास के लोग थे वहां पे, उनको दया आ गई, देखिए टूरिस्ट बेचारा पानी लेके पकड़ा जाएगा, माँ की ग्रेस, तो उन्होंने मुझे, तो प्रकृति तो नहीं कुछ करेगी. लेकिन इनके ऊपर जो राज्य है, किसका राज्य है, इनके ऊपर राज्य है प्रकृति के पीछे एडवर्स और होस्टाइल फोर्सेज, और पीछे प्रकृति के गॉड लाइक फोर्सेस. तो ये तो वेट करती हैं, जैसे ही आपने ये कहा वो दे डोंट वांट यू टू एस्केप देयर लॉ एंड चेंज देयर लॉ. क्योंकि एक व्यक्ति ने अगर अलग तरीका बना लिया तो सिस्टम बिगड़ जाएगा. एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, विवाहित हैं जीवन में लोग, विवाह के बाद बच्चे पैदा करना, फिजिकल रिलेशन, ये सब चलता है, बल्कि इसको नॉर्मल नेचुरल माना जाता है. आप योग की यात्रा में जा रहे हैं, यू आर सपोज टू नॉट गेट रिड ऑफ द लेडी बट गेट रिड ऑफ दिस, एंड इट डजेंट मैटर वेदर इट्स विद द वुमेन यू आर मैरिड और यू आर विद समबडी एल्स, इट्स इररिलेवेंट. क्योंकि योग के ऊपर तो अलग तरह से ये होता है कि भाई ये थोड़ी कि ये जस्टिफाइड है वो जस्टिफाइड नहीं है. अब अगर आपने इस चीज को छोड़ दिया तो एडवर्स फोर्सेस कहती है हमारा दुकान बंद कर रहे हो, तुम कहां से आ गए, यू आर क्लोजिंग माई शॉप. तो वो चारों तरफ से आपको प्रयास करेंगी टू टॉर्मेंट योर लाइफ इन एवरी वे. तो दोनों पार्टनर अगर एक साथ रास्ते पर नहीं है तो यू कैन इमेजिन व्हाट हेल कैन कम इन द अदर पर्सन्स लाइफ सिंपली बिकॉज दे आर नॉट इन सिंपैथी विद द सेम पाथ. नॉर्मली बोथ आर एंजॉइंग लाइफ, बट अब ये है अहिल्या और उसकी कहानी. तो दीज फोर्सेस कम, दे डोंट वांट, तो वो आपके लिए हेल क्रिएट करेंगे. जिस चीज से आप अटैच हो ना, वो कहेंगे अच्छा, वो पुरानी फिल्मों में डॉन होता था ना, वो क्या करता था, कहता था कोई तो कमजोरी होगी हीरो की. कहता अच्छा इसको अपनी बहन से बहुत प्यार है, और ढूंढ के क्या करते थे, वो बहन को ही पकड़ करके वो गिरवी रख लिया. जिससे आपको अटैचमेंट होगा वो उसको अटैक करेंगी, क्योंकि आपको तो डायरेक्ट अटैक नहीं कर पा रही है. माँ कहती हैं दीज फोर्सेज व्हेन दे कैनॉट अटैक मी दे अटैक दोज हु लव मी, मदर विल गो देयर. तो वो जो दे ट्राई टू क्रिएट हेल अराउंड यू, और आसपास लोग वल्नरेबल हैं, हर व्यक्ति ऐसे थोड़ी प्रयास कर रहा है. नेचुरल है कि आपके अंदर एक ह्यूमन सेंस भी है, एक हायर सेंस भी है, करुणा भी आपके अंदर जागृत. आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि करने वाले करते हैं दिसे हेल्प टू यू, पर वो तो फिर योग का रास्ता नहीं है ना, वो तो स्वार्थ का रास्ता है. तो वो चारों तरफ आपको मनी से अटैचमेंट है तो आपके पास अचानक प्रॉब्लम हो रही है. तो इस तरह से वो रोग फिजिकल बॉडी तो इनका फोर्ट है, वल्नरेबल है, तो फिजिकल बॉडी को अटैक कर रही है, तब इट्स दैट्स द हेल टॉर्मेंट. और अगर कोई कहे कि मुझे अब सीधा हेवन में जाना है लेकिन मुझे पीड़ा कष्ट नहीं चाहिए, तो नो पेन नो गेन. अगर आप एंड्योर नहीं कर सकते हो, दैट्स व्हाई मां कहती है फेथ एंड एंड्योरेंस आर द टू थिंग्स नीडेड. यू हैव टू एंड्योर द पैसेज. आप शॉर्टकट नहीं है कि मैं बिना उसके अचानक चला जाऊंगा. सनलिट पाथ में भी नहीं है. सनलिट पाथ में अंतर क्या है, शेरविंद कहते हैं डिफिकल्टीज आती हैं, पर चूंकि आपने साइकिक एटीट्यूड लिया आप हंसते हुए जा रहे हो. जैसे आप एक हॉरर टनल में चले गए, वो मैडम टुसाड म्यूजियम में या और भी हैं, अचानक इधर से हाथ आ गया, उधर से, आप बता, अरे यार आएंगी आपके सामने बट यू आर नॉट मूव्ड बाय देम. Whereas ordinarily you are moved by them, you are sucked into them. So that is the difference between the sunlit path and of sadhana and otherwise. लेकिन अगर आप upward ascent के लिए try कर रहे हैं तो ये मान के चलो कि all the forces of the world, not only hell forces but even heavenly forces, they will lure you. एक कहा जाता है कि वर्ल्डली सक्सेस जिनको मिलती है, एक सेइंग है, आई थिंक श्री रामकृष्ण परमहंस की है, श्री अरविंद इसको कहीं ना कहीं इसको टेस्टिफाई भी करते हैं, तो सम ऑफ देम आर फॉलन योगीज, क्योंकि उनके अंदर ये एम्बिशन था तो वो नहीं कर पाए. इस रूट में जाके बहुत बड़े क्रिकेटर बन गए, बहुत बड़े फिल्म स्टार बन गए. एंड इफ यू सी देयर लाइफ यू विल फील इट कि कोई एंग्स्ट है, किसी किसी के अंदर, सबके अंदर नहीं, सम ऑफ देम, कि उनके अंदर एक खोज है और वो उस ग्लैमर की दुनिया में ट्रैप्ड हैं, वो उस अनुभव को ले रहे हैं, लोग समझ रहे हैं लेकिन उनके हृदय की पीड़ा. रेखा फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ दोज. तो देर आर पीपल हु गो थ्रू दैट, हेमा मालिनी फॉर दैट मैटर. सो ये भी होता है कि ये ल्योर भी आते हैं जिसमें आप साइड ट्रैक्ट हो सकते हो. तो ये लंबी चीजें हैं, 10 मिनट हमारे पास. इस अदिति एंड डिवाइन मदर वन एंड सेम. Aditi is that aspect of the divine mother where she becomes the mother of the gods. But the divine mother, the incarnate divine mother, is the full manifestation of the supreme mother, which is not only Aditi, but beyond, as Anandamayi, Chaitanyamayi, Satyamayi, beyond, Parame, Supreme, beyond the manifest and the unmanifest, beyond the being and the non-being. Aditi is only one of her aspects. So she is also Aditi, but not only Aditi. But in that sense, ki she is embodying the powers of Aditi. Not that, again, supreme, Sri Aurobindo is supreme, but we should not, ki, okay, it's the same thing. Supreme has taken a human body with a certain purpose. So if you pray to him, your prayers will reach the supreme through him. But there is something, कुछ ऐसा है जो श्री अरविंद कर रहे हैं विच द सुप्रीम कैनॉट डू विदाउट हिम. इट्स ए वेरी पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट. तो सृष्टि अवतार की जो महिमा है ना, ये ऐसे ही नहीं है. अवतार की महिमा क्या है? अवतार की महिमा यह है कि वो सृष्टि में सुप्रीम को जब सृष्टि के अंदर एक महान परिवर्तन लाना होता है तो वो अवतार रूप ग्रहण करते हैं. तो अवतार कौन हो गए? उन्होंने वह कर रहे हैं, अगर आप इसको टेक्निकली बोलें, जो सुप्रीम विदाउट टेकिंग द अवतार वुड नॉट बी एबल टू डू. और साथ में क्या हो रहा है जब वो मानव रूप धारण कर रहे हैं? मानव रूप जब धारण कर रहे हैं तो वो हमारी व्यथा समझ रहे हैं. सुप्रीम इज बियॉन्ड ऑल दिस. आप सुप्रीम के सामने रो रहे हैं, मेरा बच्चा तकलीफ में है. ही विल लिसन, ही मे रिस्पॉन्ड, बट ही इज नॉट मूव्ड बाई द वे योर हार्ट इज मूव्ड. लेकिन जब वो ह्यूमन बर्थ लेते हैं देन ही अंडरस्टैंड्स. तो वो जो करुणा निकलती है वो कहीं अधिक पावरफुल होती है. टीयर ड्रॉप इन द आई ऑफ द डिवाइन बताती है ना, नलनिदा का आर्टिकल है. माता जी जब किसी के हस्बैंड की डेथ हुई तो माँ से मिलने गई, बहुत दुखी थी, यंग एज में हुई थी. माँ खड़ी थी द्वार पे स्ट्रेचिंग हर हैंड्स. And she saw tear drop in the eye of the Divine Mother. Why? Dukh se nahi. She understands the suffering. To unhone keval ek baat puchhi unse. Do you want to meet him? Ye to usne expect hi nahi kiya tha. To ghabra gayi. Wo directly mujhe unki beti ne bataya, jo who was also there. Do you want to meet him? Ab unko samajh nahi aaya, ye to soch ke nahi gayi thi. To unke hirde se nikla, Mother, he is happy. Yes, my child, he is safe and happy with me. Then she said, no, let him be safe and happy. I am happy with you. तो वो ये चीज सुप्रीम के फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि वहां तो ना फीलिंग्स है ना थॉट्स हैं. इफ यू रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ परस्यूट ऑफ द अनोएबल में आपको लगेगा कि ये भगवान कैसे हैं, मतलब आपको इट इज ओनली जब वो उनके हृदय में जाके डिवाइन मदर का स्पर्श होता है देन ही एक्सपीरियंसेस. अदरवाइज उनके पास तो आपकी फीलिंग्स थॉट्स, तो ये जो कहते हैं ना निर्गुणों निराकार न तातो न माता न बंधु न भ्राता, वो स्टेट है उनकी. तो उसमें हमारा ह्यूमन सेंस खत्म हो जाता है. तो दैट इज द डिफरेंस. सो क्रिएशन के द्वारा क्रिएटर भी इंक्रीज होता है और एनरिच होता है. और कोई कहेगा ये क्या मतलब हुआ. ओके ऐसे है, व्यास अगर महाभारत नहीं लिखते तो भी व्यास रहते. पर इजंट इट ट्रू कि महाभारत लिख के व्यास बिकम्स मोर देन व्यास, ये भी ट्रू है. नथिंग वुड बी डिमिनिश्ड ऑफ व्यास इफ ही डिड नॉट राइट द महाभारत. नेति नेति, बट व्हेन ही राइट्स द महाभारत व्यास becomes more than Vyas because he has brought out something which is marvelous. Srishti bani isiliye hai, nahi to aise thodi ki bhagwan ne aise impel hoke bana diya. Wo jo delight hai oneness ka, wo express hoke multiplicity hai, to sambhav hi nahi hai na. To multiplicity ka jo anand hai, multiplicity ke andar jo operating system hai, ignorance mein jaake usko anubhav, not only experience but to help humanity out of that state, avatar comes. So if you ask me, to me, ये मेरी अपनी जो इनसाइट, बट आई एम पुटिंग इट नाउ लॉजिकली, अवतार इज अवतार, सुप्रीम इज सुप्रीम, बट द अवतार इज बियॉन्ड द सुप्रीम. इट्स ए वे ऑफ सेइंग, ओके, इट्स ए वे ऑफ सेइंग, बिकॉज सुप्रीम इज सुप्रीम, बट द अवतार इज बियॉन्ड द सुप्रीम, बिकॉज अवतार फील्स सुप्रीम हैज बिकम दैट. तो ये दिस इज हाउ वन हैज टू अंडरस्टैंड. मोक्षवादी इस बात को नहीं मानेंगे, वो तो ये भी नहीं मानेंगे कि अवतार हो सकता है. जो स्ट्रिक्ट रिजिड वेदांतिन्स हैं वो कहेंगे ये तो बड़ी इमोशनल बातें करते हो, दैट्स देयर प्रॉब्लम. सो दिस इज ओके. हाउ श्योरबिंदो वर्क्स टू वर्क्स टू फ्रीडम सिटिंग इन पांडिचेरी. बहुत अच्छा प्रश्न है तुम्हारा, यही प्रश्न है तुम्हारा, कोई और है? अच्छा एक मिनट, हाँ ये क्योंकि उनकी चेतना इतनी विस्तृत हो गई है, उनके पास इतने इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं, डेवलप हो गए हैं, कि वो वहां बैठ के वैसे ही काम कर सकते हैं सारे विश्व पर जैसे विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा में क्रिएट कर रहे हैं. आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. जैसे एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट एक कमरे में बंद होकर जिसका नाम तक नहीं जानते बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है सारे संसार की, उसी प्रकार से श्री अरविंद जिस अवस्था में हैं उनको हाथ पांव मुंह से काम करने की जरूरत नहीं है. शॉर्ट आंसर, यस, क्विक लास्ट क्वेश्चन.
जैसे अभी आपने बताया कि हम हमारा व्यर्थ जो होता है जिनका जीवन पूर्ण हो जाता है तो हम ऊपर जाते हैं, लेकिन मैंने बहुत सुना है कि यम नीचे लेने आते हैं हमें.
वैसे पे तो नहीं सुना, गलती से. बच्चे बहुत कुछ सुना है, बहुत सारी कहानियां हैं. तो अगर कोई व्यक्ति इसी लायक है तो यम आएंगे पास वास लेके. कौन आएगा? देखो इसको ऐसे समझो, हाँ कैसे हैं क्या हैं, ठीक है. अब इसको ऐसे समझो, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, है ना. अब वही टीचर एक अच्छा बच्चा है तो उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं? वेरी गुड, लवली बेटा, ऐसे करते हैं ना. और कोई दुष्ट बच्चा है तो वही टीचर कैसे आते हैं? हाथ दिखा, अब तो नहीं करते वैसे, स्केल लाओ. तो भयभीत होता है. अगर हमने जीवन भर दुष्कर्म किए हैं और यम कौन है, वो उनका भी टास्क जॉब डिस्क्रिप्शन है, बड़ा गंदा जॉब डिस्क्रिप्शन है. यस टू बी एब्सोल्युटली, कहते ना अनइमोशनल, क्योंकि सृष्टि का बैलेंस. लेकिन जिन्होंने अच्छे जीवन जिया है, अच्छे भाव से जीवन जिया है, जब यम आते हैं तो वो यम में यम नहीं देखते हैं, धर्मराज देखते हैं. वही यमराज है, वही धर्मराज है. और वो कहते हैं आई एम रेडी टू कम, गाड़ी लाए हो. तो उनके लिए कौन सी गाड़ी लाते हैं मालूम है? शास्त्रों में क्या लिखा है? देवताओं के साथ यान आते हैं, देवयान, उसमें लेके जाते हैं। और जिन्होंने जीवन भर दुष्कर्म किया है वो जैसे ही हमको देखते हैं, ओ माई गॉड मेरा टाइम आ गया, मैं एंजॉय कर रहा था लाइफ, अब तो मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, ये हम कहते हैं हाँ अभी मैं एंजॉय कराऊंगा, भैंसे की सवारी कराऊंगा तुझे। तो जाकी रही भावना जैसी यम सूरत देखी दिन वैसी। ओके बट नथिंग, ही इज आल्सो ए गाय हु इज जस्ट डूइंग अ जॉब, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ।
हनुमान चालीसा में आता है अंधकार रघुपुर जाई।
हाँ
रघुपुर जाई जो है वो,
अब समझा तुमने, ये जितने अवतार होते हैं इन्होंने धरती के पास में जाके, बहुत सुंदर प्रश्न है जो बात हो रही थी, सबके अपने अपने ऐसे धाम हैं जहां पे वे, जिनको कि अवतार धरती से जा नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है वो धरती का परमानेंट पार्ट होते हैं, तो उन्होंने अपने ऐसे स्थान बनाए हुए हैं जहां पे आप जा सकते हो, वहां पर रहोगे तो आपको रघुवर की जो जॉय है उनके प्रेजेंस का वो मिलेगा, जो श्री कृष्ण के उसमें मगन है तो उनको उस तरह का, एक ही डिवाइन बट उन्होंने श्री अरविंद का, तो वो श्री अरविंद के धाम जाके वेट कर रहे हैं फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक है, एक लास्ट बड़ा मजेदार है मैं ले लूं, यदि हमें दुष्ट लोगों से झेलना पड़े तो कैसे रहें? दुष्टों को दो तरीके से, अगर सक्षम नहीं हो तो दूर रहो, संगति त्यागो उनकी, सक्षम हो तो दुष्टों के साथ सख्ती से डील करो, बाबा योगी आदित्यनाथ जैसे। ठीक है, तो दो ऑप्शन हैं, और बेटर ये होगा सक्षम नहीं हो तो सक्षम बनो, क्योंकि ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए जो दुष्टों का संहार करे। अब मैं एक मजेदार अपनी एक छोटी सी बात सुना देता हूं, हाँ फिर बंद करता हूं। 5-7 साल की उम्र थी, ट्रेन में जा रहे थे, कहानी सुनी है कि लोगों ने, इसको बंद कर दो नहीं चलो चलेगा, तो ट्रेन में जा रहे थे, मेरे पापा, पापा के बगल में बैठी थी मेरी बहन, और अब गांव में क्या होता है ना, ये सब हिंदू मुसलमान सब सब दोस्त होते हैं, तो पापा के दोस्त थे नूर अंकिल, मुस्लिम थे, सिनेमा के मैनेजर थे, बहुत स्पेशल प्लेस देते थे हम लोगों को, तो बड़ा काम के थे, चाय पिलाते थे, फिर फ्रंट रो तो बालकनी वालकनी नहीं होती थी तो वो स्पेशल सीट मिल गई, तो मैं इधर देख रहा था खिड़की के उधर, तो उन्होंने पूछा बेटा ये तो बड़ा फिलोसोफर जैसा लग रहा है, बेटा तुम क्या सोच रहे हो? तो मेरे को एक तो अच्छा नहीं लगा, डिस्टर्ब कर रहे हो ना किसी को, थॉट में बच्चा होता है ना, क्या हुआ सोच रहा है, तो मैंने कहा अंकिल मैं सोच नहीं रहा हूं, मैं प्रे कर रहा हूं। अच्छा तुम क्यों प्रे कर रहे हो? तो मैंने कहा मुझे शक्ति चाहिए। उन्होंने शक्ति का क्या करोगे? ओके मैंने कहा